الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چل کے ناظرین آپ کو بہت بہت عید مبارک. عید اسپیشل کا ایک بہترین اور بڑا خوبصورت پروگرام فیس ٹو فیس میں ہم حاضر ہیں. نگران شورا کے ساتھ ہمارے مہمان دیگر بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس میں عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہوں گی, علم دین بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اپنی زندگی اور مزید بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے اچھے اچھے پوائنٹس بھی حاصل ہوں گے. تو جی شہزاد بھائی آگے بڑھیں اور آج بتائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا آج کے ٹاپکس ڈسکس ہوں گے.
دیکھیں پروگرام کا نام ہے فیس ٹو فیس ہے, اور فیس ٹو فیس میں جو پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں وہ نگرانی شورا کے سامنے فیس ٹو فیس ہوتے ہیں. اب ہماری باتیں ہوتی ہیں, اب یہ کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کتنا ڈینائی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. ایک جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے نا, اور ہمارا جنریشن گیپ تو ہے, اگر میرا نہیں قبول کریں گے تو ان کا اور ان کا جنریشن گیپ آئے گا نا. تو اب آگے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میں اور ان پہ فرق نہیں ہے؟
نہیں نہیں فرق ہے حضرت,
آپ نے کہا نا قبول نہیں کریں گے.
نہیں ان پہ نا
ذہنی تو بھی تیار ہے نا.
اصل میں جنریشن گیپ کا مسئلہ یہی ہے کہ کچھ نا بڑے جو وہ ہے نا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر چھوٹے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے.
نہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہے ہیں یا چھوٹا؟
نہیں نہیں استغفر اللہ, بڑے تو یہ ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, رتبے میں بھی بڑے. میں نیوا میرا مرشد اونچا, یہ سنا ہوگا آپ نے محاورہ, تو مرشد کے شعر ہے. میزبان بھی ہے, دو میزبان ہیں آج, ایک نگرانی شورا ہے اور ایک آصف بھائی ہیں. جی آج صاحب
ارشاد فرمائیے. حاضر.
ایسی بات ہوئی تو جنریشن گیپ میں آف دی ریکارڈ جب وہ چل رہے تھے کہ نا لوگ آصف بھائی سے چل رہی تھی تو ہم آن ریکارڈ ہی کر لیں, اجازت ہے سر؟
جی جی.
کہ عید کا موقع ہوتا ہے تو میزبان کو ہے نا, ایک آپ میزبان اور دوسرے میزبان کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے نا کہ مہمان آئیں گے, پھر مہمان نوازی کرنا سنت ہے. تو پھر اس کے مطلب بعد میں آئے اور بھی کچھ لوازمات ہو تو کیمرے میں بھی اچھے لگیں گے, ہمیں بھی اچھے لگیں گے, اور کھاتے پیتے کچھ بات کریں گے تو مزہ آئے گا. تو آپ بھی میزبان, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے میزبان بھی آپ ہیں, کیا فرماتے ہیں؟
سب ایک منٹ میں تھوڑی کھجور لے لیا, میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ آپ کو بھوک لگی ہے,
جزاک اللہ, جزاک
اللہ. دماغ ذرا صحیح کام کرے, چلے ایسا آپ جواب دیں تھوڑا اندر جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. آپ نے دیکھ لیا ہوگا فیس ٹو فیس کے اندر کہ جو چیزیں آف دی ریکارڈ ہو رہی تھیں اور ریکارڈنگ سے پہلے ہو رہی تھیں وہ ریکارڈنگ کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئی. تو واقعی فیصلہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے, دیر سے آنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, یا جیسا ہو رہا تھا ویسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب آپ کسی کے بطور مہمان جاتے ہیں تو میزبان آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام یا انتظام کرتا ضرور ہے, مگر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ مہمان کے آنے سے پہلے ہی سارا انتظام ہونا چاہیے. مہمان آتا ہے, بیٹھتا ہے, پوری باتیں کرتا ہے, دونوں کچھ خوشگوار موڈ میں آتے ہیں, پھر کوئی آ کر چیزیں رکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو لیکن بعض اوقات مہمان کو ایسا ہوتا ہے کہ یار جلدی آ جائے. ایک صاحب کسی کے مہمان ہوئے تھے, کافی دیر ہو گئی, کھانا شروع ہی نہیں ہو رہا تھا, تو میزبان نے مہمان کو پوچھا کئی تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو مہمان نے کہا مجھے کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے. یہ کہہ کر اس نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ کھانا لگا دیا جائے. آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 13ویں شب ہے ماہ رمضان 1447 ہجری کی, اور عید کے لیے پروگرام ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے فیس ٹو فیس. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی نے اپنے گھر پر سحری کا انتظام کیا ہوا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو, تو ایسا کچھ معاملہ چل رہا تھا. خیر آپ کو کھجور مل گئی ہے.
نہیں اور بھی لے گئے,
چلو اور بھی دے,
ایک سے کام نہیں چلے گا. آپ یہ والی لیں, یہ بڑی اسپیشل آئی ہے. دیکھیں یہ سیزن میں یہ کھجور نہیں ملے گی آپ کو کہیں اور.
جی کہتے ہیں نا
یہ اس سیزن میں, یہ مدینے سے اسپیشل آئی.
دیکھو مدینے کی کھجور آپ کو کھلا رہی ہے.
جزاک اللہ, میں یہ سوچ رہا تھا صرف میرے کو ہی کھلا رہے ہیں, باقیوں نے کیا قصور کیا؟
شہزاد بھائی کی وجہ سے مجھے بھی ملے.
باقیوں کا قصور ہے, باقی بولے نہیں ہیں,
پڑوسی کے کچھ زیادہ ہیں.
آپ کھا لو, پہلے چبا لیں, بیج نکال لیں, اگر اندر اتر گیا بیج تو مسئلہ ہو جائے گا.
ایک اور چلے گی؟
نہیں نہیں ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ماحول میں ہم نے یہ سیکھا ہے محفل میں نا आपने मेरी भूख का ख्याल रखा या आप समझ रहे थे कि यार दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। लेकिन बुजुर्गों से स्टार्ट करते ना, जैसे हमारे ये दो बुजुर्ग हैं फिर मुझे देते तो मेरा ख्याल से ज्यादा अच्छा होता।
मसला ये है कि ये दोनों बुजुर्ग जो है ना, यूं तो रुतबे में तो बुजुर्ग है लेकिन उम्र में दोनों मुझसे छोटे
हैं।
ये भी छोटे हैं मुझसे, ये भी छोटे हैं मुझसे, दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो बुजुर्ग कौन हुआ? अब आपको चाहिए मुझे उठ के खिलाएं,
कौन सी खाएंगे?
यहाँ पर एक बात मैं इसी को प्लस करूंगा कि जैसे ईद पे उमूमन मेहमानों की आमदरफ्त का होता ही है, और यहाँ पर भी एक माहौल ऐसा नजर आया कि मेजबान को उम्मीद थी कि ये 5, 6, 8, 10 आएंगे और आगे 18-20, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ईद के दिनों में भी तो सामने दरपेश।
खाली ईद का प्रॉब्लम नहीं आज अमीन भाई, होना यही चाहिए कि जहाँ भी जिसके यहाँ भी आपको बतौर मेहमान जाना है, मेजबान को कंफर्म पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ कितने मेहमान आएंगे, क्योंकि ये बाज़ोकात फिर ऐसा होता है कि रश लग जाता है और फिर जो मेहमान मेजबान के लिए जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना कि यार अब अरेंजमेंट कहाँ से करें सबके लिए, उसने अरेंजमेंट अपने हिसाब से क्या हुआ होता, आप कहते हैं चार पाँच लोग आएंगे तो अच्छा, अब इसमें दूसरा ये होता है कि आपने 5 कहा तो आपको पता है कि 5 ही आएंगे, अब जिसको भी लाना है वो बगैर इजाजत के आ भी नहीं सकता, मसला तो सारा ये है, अब इजाजत मांगना ये भी एक मसला है।
हम तो ये कह रहे हैं कि भाई खुशी दाखिल होती है ना कि भाई हम आएंगे इतने सारे तो जरा खुश हो जाएगा बंदा।
नहीं खुश तो होगा लेकिन इस खुशी के अंदर यही होता है ना कि आप कितने लाएंगे। देखिए ना अरेंजमेंट करना होता है, बैठने का जगह बनानी होती है, अब ये तो चलो माशाल्लाह कोई शादी होती है तो 2-4 और भी लोग आ जाएंगे, और ये इस जगह है भी नहीं कोई रिकॉर्डिंग का माहौल था तो अरे इतने तो पार्टिसिपेंट है, बाकी पूरे स्टाफ ने जो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी थी सबने आना था और इन्होंने अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है, तो मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन ना ले, सब इनको भी थोड़ा टेंशन हो गया ना, तो
मैं तो
मैं सब खाना पीना याद तो आएगा ना।
अमीन भाई की बात पे मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने अपनी बच्ची की एक सादगी से शादी की, मोरो से आए हुए थे, तो मैंने कहा बोला ऐसा बस वो मैं सादगी से मैंने शादी की, 50 आदमी खानदान के घर करके ही हमने करके, तो मैंने कहा क्यों बड़ा कर लेते, कोई 500,000 का कर लेते, बोला हमारे मोरों में ये हिसाब किताब है कि अगर मैं 1,000 लोगों को काट देता हूँ ना तो हर बंदा अपने साथ 4-5 कट्ठे लाता है, ये वहाँ की रीत है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को काट दिया और उसने 3-4 कट्ठे ना लाए, ऐसी सूरत में वही आई साहब ने जो बात की मेजबान बड़ी तकलीफ में आ जाता है, अब उसने अगर 1,000 की जगह 2,000 का भी खाना बनाया होगा मिसाल के तौर पर और मेहमान शादी में आ गए 4,000, वो लुट पड़ती है, कभी जाए आप इंटीरियर में जाए खाने को नहीं मिलता आपको।
ये जो मामला है कि अगर इस तरह का जो होता है कि बगैर दावत के पहुंचना तो क्या इसकी इजाजत होगी?
नहीं इसकी इजाजत नहीं है ना, इसकी इजाजत नहीं है
ऐसे। इवन मैं अगर हम कराची में जाते हैं ना, उमूमन देखें अक्सरियत के ड्राइवर जाके अंदर खाना खाते हैं, जबकि हमें अगर मुझे दावत है ना तो मेरे ड्राइवर को दावत नहीं है। खैर मेरे तो कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर की तरकीब यही होती है कि आपने यहाँ खाना नहीं खाना है, लेकिन आपको 80-90% लोगों के ड्राइवर आपको मिलेंगे, नहीं लेते ना
इजाजत। इजाजत का भी ये होता है ना कि इजाजत बनती नहीं है बाज़ औक़ात। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ ले गए और अपने साथ किसी को ले गए साथ, और आपने कह दिया था कि मैंने इनको अपने साथ लेकर आया हूँ, तो आपने इरशाद फरमाया। नबी पाक तो मालिक व मुख्तार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो उलमा ने हमारी तरबियत फरमाई वो ये है कि आप यूँ नहीं, जो उर्फ के मुताबिक ले जाने वाला होता है, जैसे कि आप फैमिली जाती तो फैमिली के जगह दो, तो दो के साथ दो बच्चे तो होंगे ना, तो बच्चे तो चल जाएंगे, लेकिन अब वो बोले कि मैं दो तो मेरे साथ और ये 4 चल पड़ेंगे, तो ये थोड़े सब करने बैठेंगे तो जिसने तमाम किया है वो क्या करेगा? ईद के दिन पता होता है कि भाई इतने लोग आएंगे, दावत में इतने लोग आएंगे, रात को इतने लोग आएंगे, फैमिली के इतने मेम्बर आएंगे, वो खानदानों में तो नहीं होता, गिनती पूरी होती है हमारी, लेकिन जब इस तरह की कोई जनरल दावत होती है ना तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार। मेहमान के लिए ये लाजिम है कि वो बस जितना कहा गया मेरा ख्याल है उसी को ही काफ़ी समझे, और क्योंकि बाज़ों का नहीं गुंजाइश भी तो नहीं होती ना, आदमी की फाइनेंशियली भी गुंजाइश नहीं होती, घर में भी बाज़ों गुंजाइश नहीं होती, जहाँ पर अगर हॉल में भी अरेंजमेंट किया है तो उसकी भी लिमिटेड होती है। आपको डेकोरेशन का पूछता भाई कितनी कुर्सियाँ लगानी है, तो आप बोलते हैं भाई 500 कुर्सियाँ लगानी है, अब आ गए वो 700 लोग, अब 200 को बिठाएगा कहाँ? वो 3 की खूबी ये है कि मतलब इस तरह की चीज़ों के मतलब प्रॉब्लम ही ना हो ना, जो भी हो सबको पता हो उर्फ और आदत के मुताबिक जो एक चलन है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है ये ईद के मामले को भी इसी तरह मुझे लगता है। देखिए
पुराने लोग जो होते हैं ना इनकी सोच ही पुरानी होती है, ان کی سوچیں پرانی ہیں کہ مہمان کو بلایا جائے, دعوت دی جائے. اب نئے بندے جو ہیں نا, وہ نئی جنریشن, وہ چاہتی ہے کہ بھائی عید کے دن وہ اپنا سیلیبریشن اپنے گھر میں کریں, وہ مہمان نہ بلائیں. تو ماں باپ بچوں کو یوں فورس کرتے ہیں, یہ تو چلا ہوا آ رہا ہے, ہمارے یہاں تو 25 سال سے دعوت ہوتی ہے, 30 سال سے دعوت ہوتی ہے, تو خالہ کا گھر, تو ماموں کا گھر, چچا کا گھر. تو نئے لوگ جو ہے نا, وہ پرانے لوگوں کی سوچ پر عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ پرانے لوگ جو ہے نا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ اپنے ڈرائیور کو لے آیا, وہ اپنے اس کو لے آیا, میٹ کو لے آئی, وہ فلاں کو لے آئی. اور بھائی تو اگر وہ نہیں لائیں گے تو کس کو لائیں گے؟ مطلب میڈ اور ڈرائیور وہ بھی ایک انسان ہے, وہ آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے نئی جنریشن چاہتی ہے کہ وہ اپنی سیلیبریشن, اپنی خوشیاں اکیلے انجوائے کریں. لیکن والدین کے فورس ہوتا ہے, بڑے لوگوں کا فورس ہوتا ہے, جیسے قبلہ نگران شورا نے فرمایا کہ اتنے مہمان اور یہ, اس چیز سے نئے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, دعوت ہو نہ ہو, جانا ہو نہ جانا ہو, اس کی مرضی ہے بھائی.
یہ جنریشن کے
آپ نئے پرانے,
آپ ایسے تو پرانے ہو گئے,
ابھی آپ نئے کی نمائندگی کر رہے ہیں,
ظاہر ہے
یہ مطلب وہ نیا والا شوق باقی ہے. اب بندہ پرانا ہو جائے, نئے شوق رکھنے میں کیا نقصان ہے؟
نہیں حضور, بندہ پرانا ہونے کی بات نہیں, یہ سوچ آپ کی تبدیل بھی ہوتی ہے نا, عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے نا.
آپ کی سوچ ابھی وہی ہے نئے والے میں,
جو جیسا معاشرہ چلے گا ویسے میں چلوں گا. حضور آپ جیسے بتائیں گے ویسے میں نہیں چلوں گا, جو معاشرہ بتائے گا وہ چلوں گا, جو معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے. اب تو آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے.
اچھا سوشل میڈیا کا دور ہے
حضور, یہ دوسری دفعہ ریپیٹ ہو گیا.
اچھا
اس میں میں کچھ کہنا چاہوں گا.
نہیں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو,
کم از کم آپ سے تو
آپ نئے پرانے ہیں,
آپ سے تو نئے ہیں نا.
نہیں پتا نہیں نئے پرانے, آج یہ فیصلہ ہی تو نہیں ہو پا رہا اس کا.
دیکھیں ہم پرانے ہیں آپ سے, ہم پرانے ہیں لیکن آپ سے پرانے نہیں ہیں. ہمیں آپ کی سوچ ہے, یہی سوچ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, اپنے والدین کو ان کی بھی یہی سوچ ہے, ہم اس سوچ سے پریشان ہیں.
اچھا اب مسئلہ سارا یہ ہے عمار بھائی, بات یہاں نئے پرانے کی کی گئی ہے یا بات یہاں اخلاق اور شرعی احکام کی گئی ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر بات اپنی عادت اور اعتبار کی گئی ہے تو چلے اس کے اوپر بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اخلاقی اقدار پر گفتگو کی گئی ہے, ایک مینرس پر گفتگو کی گئی ہے اور اس میں بھی شرعی احکام پر گفتگو کی گئی ہے, تو اس کا تو آپ نئے پرانے پر کبھی بھی ڈبیٹ نہیں کریں گے. اگر جنریشن نئی ہو کہ جنریشن پرانی ہو, سب کے لیے احکام تو وہی ہوں گے نا.
ایسی
تو یہاں پر اگر احکام بیان کیے گئے یا شرعی اصول بیان کیا گیا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یا خود سے ہی نہیں منہ اٹھا کے جا سکتے, کہ مطلب کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گیا اور غارت گری کر کے باہر نکلا, یہ حدیث واضح ہے. اب اگر جنریشن ہو یا نان جن کوئی بھی ہو, اگر اس کے پیش نظر یہ نہیں ہے, اور میرا یہ ماننا ہے جو آپ جس جنریشن کی بات کر رہے ہیں وہ جنریشن انگوٹا چھاپ تو نہیں ہے نا, اس نے دو باتیں پڑھی ہوئی ہیں. اگر اس کے سامنے کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی بات رکھی ہے نا, اوتھینٹیکیٹ بات رکھی ہے اور ایویڈینس کے ساتھ بات رکھی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ اس معاملے میں الجھتی بھی نہیں ہے, لڑتی بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ حدیث ہے. اچھا چاچی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا یہ اخلاقی کام ہے یا یہ اخلاقی کام ہے؟ میرے بھائی وہ کون جنریشن والا آدمی ذرا ہمیں بھی ملاؤ کہ جو یوں مطلب کہ بد اخلاقی کے ساتھ بغیر دعوت کے گھس جائے گا اور بولے گا ہم جس کو چاہیں گے بلائیں گے, جس کو چاہیں نہیں بلائیں گے. دعوت بھی تو ایک ڈسپلن کا نام ہے. دنیا میں ایسا کون سا آدمی جو ڈسپلن کو نہیں مانتا؟ جو ڈسپلن نہیں عمل کرتا وہ ڈسپلن کو تو مانے گا نا. تو ایک ڈسپلن ہے, ایک طور طریقہ ہمیں بتایا گیا, اس کو اگر کوئی چاہے بڑی عمر کے لوگ بولیں یا چھوٹی عمر کے لوگ بولیں, بڑے لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹا کا سمجھا رہا ہوتا ہے تو سمجھا صحیح رہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا, چھوٹا غلط کر رہا ہے بڑا سمجھا رہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. بات تو یہاں یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
کیا مسئلہ یہ ہے کہ عید پر دعوت تو کر دی, اب مثال کے طور پہ بڑا بھائی بول رہا ہے کہ پھپھو کو نہیں بلانا, بہن بول رہی ہے خالہ کو نہیں بلانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دعوت تو کر دی, دعوت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب وہ لوگ آنے کے بعد, ان کے جانے کے بعد جو لڑائی جھگڑا گھر میں ہوگا نا, اس سے آج کل کے لوگ یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو نہ بلایا جائے اور اپنا گھر میں جو کرنا ہے کر لو, بہن شادی شدہ ہے اس کو بلا لو, بہنوں ہی آ جائے گا, بچے وغیرہ آ جائیں گے اور ہم اپنا گھر میں ہی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لیں گے, باہر سے کسی ریلیٹو کو نہ بلایا جائے.
شاید ایسا
لگ... وہ آ کے پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنتا ہے, وہ تو کھانا کھا کے چلے گا, یہ تو بات کی بات ہے, کھانا کم زیادہ جو بھی تھا.
بہنیں آ کر تھوڑی لڑیں گے,
ہاں وہ
بہنیں آ کر تھوڑی لڑیں گی, بھائی کی بیویاں آ کر تھوڑی لڑیں گی, ان کے سب بچے جمع ہوں گے تو وہ تھوڑی لڑیں گے, وہ تو سب ایک دوسرے کو ہار پہنائیں گے, بیٹھیں گے قدموں میں بیٹھیں گے اور یوں چلے جائیں گے. باقی یہ جو پھوپھیاں ہیں, جو مومانیاں ہیں یا خالہ ہیں, یہی بیچاریاں ساری جو آئیں گی یہی لڑیں گی, باقی ان کو تو تھوڑی لڑائی کرنا آتا ہے. نئی جنریشن کو تو لڑائی کرنی آتی ہی نہیں, ان کے بیچار منہ میں زبان ہی کوئی نہیں ہے, یہ کہاں سے لڑیں گے.
زیادہ تر بیویاں کرتی ہیں کہ نا اس کو بلایا تو اس کو نہیں بلایا تو میں بول رہی ہوں نا تو یہ وہ, تو بیویوں کا زیادہ ہے. آپ بہن بھائی,
آپ کو نہیں لگتا کہ رشتوں کو یہاں کاٹنا مناسب نہیں ہے اور رشتوں کو دور کرنا مناسب نہیں ہے؟ چلے آپ جنریشن سے بات کرتا ہوں میں.
نہیں بس وہی میں نے آپ کو بات کی نا کہ ان کے جانے کے بعد جو گھر میں امی ابو کی لڑائی ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ پریشانی اس سے ہوتی ہے کہ وہ امی بعد میں کچھ بول رہی ہیں کہ وہ تمہاری بہن آئی تھی وہ ایسے کر کے چلے گئی ہے, ابو بول رہے ہیں کہ تمہارا والا آیا تھا تو وہ ایسے کر کے چلے گیا. یہ جو اصل جو ان کے جانے کے بعد جو گھر میں لڑائی جو بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ کی.
دیکھیں اگر کہیں بڑے ایسا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ بتائیے کہ اس طرح اگر رشتوں کو ختم کر کے ہم اتنا اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیں گے تو خاندان اور رشتوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ صلہ رحمی کا جو اصول ہے وہ کیسے پورا کریں گے؟ اور جو رشتوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ جو برکات رکھی گئی ہیں وہ کہاں سے لیں گے؟ ویسٹرن کلچر میں جتنے ڈپریشن انزائٹی بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ خاندان اور فیملی سے کٹ جانا ہے. یہ میں نہیں کہتا, آپ ریسرچ کر لیں آپ, ٹھیک ہے.
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ڈپریشن انزائٹی, ان چیزوں میں ایک خاندان سے میل ملاپ زیادہ رکھنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. ایک وجہ والدین بھی باعث بنتے ہیں اولاد کو ڈپریشن کا اور انزائٹی کا مریض بنانے میں. ایون بہن بھائی بھی اس میں بہت اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ صرف ویسٹرن کی بات نہیں ہے, اس معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا.
بالکل ہو رہا ہے نا, اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں آج کل بزرگ جو ہے وہ بچوں پہ کہ ہم نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے. اب نئی جنریشن مان ہی نہیں رہی, وہ کہہ رہی ہے بھائی ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جئیں گے, ہمارے اپنے اصول ہیں. اب کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ بات کرنے بیٹھے تو آدھے گھنٹے کا لیکچر. ارے بھائی سارا ٹائم تو آپ نے میرا لیکچر میں نکال دیا, اتنی دیر میں دوستوں کے ساتھ کھانا بھی کھا کے آ جاتا.
یہ بڑا مسئلہ ہے, رشتے ختم کر.
جنریشن گیپ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ بڑے سمجھ,
گیپ آپ خود بھی مان رہے ہو اور بولتے ہو کہ
یہ بڑے سمجھ ہی نہیں رہے نا سر.
بڑے وہ سمجھے نا کہ جو سمجھنے کی چیز ہے, کہ جو سمجھنے کی نہ سمجھنے کی چیز سمجھانے کے اوپر ہماری ایسا نہیں لگتا کہ جنریشن کے بھول کر رہی ہے.
ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, ہم جو جنریشن ہے ہم آج میں جینے والے لوگ ہیں. آج میں آج جو ہے اس میں جیو اور آج ہمیں اسپیس دیں. ٹھیک ہے بزرگوں کا سمجھانا اپنی جگہ ہے لیکن اسپیس بھی تو دینا. بیٹا ہے یا بچے ہیں کچھ چاہ رہے ہیں تو چلو اسپیس دے دو, ان کی بھی رکھ لو.
365 دن اسپیس ہی تو دیا ہوا ہے. شادی مطلب کہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے, کوئی عید وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے. مکمل اگر آپ یہ لے بھی لے تو کوئی 10-12-15 دن سے زیادہ کا تو یہ پورا ملا جلا کر بھی کوئی سارا سلسلہ نہیں ہے. باقی 365 دنوں میں سے 350 دن تو اسپیس ہی اسپیس ہے. بھیا کہاں ہیں, خاندان میں کون سے پوچھنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جتنے خاندان کے اندر ناراضگیاں ہیں کیا پہلے تھی؟ پہلے نہیں تھی. اب جب گیپ ہوا پھر بھی کیوں ہے کہ وہ گیپ؟ اب اصل میں نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, آدھا تیتر آدھا بیٹھے. کوئی بولتا ہے کرو, کوئی بولتا ہے نہیں کرو. ہمارے بڑے بوروں نے تو خاندان نبھائے تھے, جاتے تھے, بیٹھتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, بڑوں کا ادب ہوتا تھا. اور جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے ہمارے والد صاحب ہمیں لے کے جاتے تھے, آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے جاتے تھے, آپ کی امی آپ کو لے کے جاتی تھی. اب جنرل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر گئے, آپ کی والدہ آپ کو لے کر گئیں, ہم کیا اپنے بچوں کو ہم لے کر گئے؟ جو چیز ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کی تھی وہ چیز ہم نے چونکہ ہماری اولاد کے ساتھ نہیں کی, لہذا اولاد کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی نا ہماری ہے. اب جب ہوش آتا ہے یعنی ہمارے کو بھی یاد آتا ہے کہ نہیں یار یہ عید کا ٹائم ہے, اس ٹائم میں ملنا چاہیے, تو بچے کہتے ہیں یار کبھی ملے ہی نہیں ہے, آپس کے اندر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں. تو
اصل میں بھائی صاحب یہ جو جنریشن ہے نا یہ نہیں چاہتی کہ ہم رشتہ داروں کے یہاں جائیں. اب کیا جگہ جگہ جو ہے وہ بچوں کے پلے ایریا بن گئے ہیں, لوگ بچے وہاں جانا چاہتے ہیں. اب ہم زبردستی جو ہے وہ والدین تھوپ دیتے ہیں ان کے اوپر کہ بھائی ہم اپو کے گھر جا رہے ہیں, ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں, وہاں جا کے بھی بیٹھنا ہے. اب جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی وہاں جا کے بھی ہمیں بیٹھنا ہے, اس سے اچھا ہم گھوم ہی لیں, باہر کھانا کھلائیں, گھر میں وہی کھانا.
ادھر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یار, اس کے بعد والدین لے کے جا ہی رہے ہوتے ہیں نا, نہیں جا رہے ہوتے
یار ہوتے. لیکن اب یہ ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویکیشنز پہ جب اسکول کی چھٹیاں یا ویکیشنز ہوتی تھی نا تو والدین نانی کے گھر پر رکنے کا یا دادی کے گھر پہ رکنے کا, وہیں رکے ہوئے ہیں بندہ. اب یہ ہے ماحول چینج ہو گیا, اب اولاد والدین سے کہتی ہے کہ ویکیشنز ہیں تو ہم پھر آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں وہاں ٹریول کرتے ہیں, یا اسی ملک میں کہیں دوسرے شہر جاتے ہیں وہاں ٹریول کر لیتے ہیں, ویکیشنز اپنی وہاں گزار لیتے ہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا فورس کر رہے ہیں کہ لوگ آپس میں ملیں, خاندان والے زبردستی ملیں؟ بھائی بچہ نہیں ملنا چاہ رہا, والدین کو ملنا, والدین ملے.
سر میں فورس میں نہیں کر رہا ہوں, مسئلہ سارا یہ ہے میں تو اس کلچر کو یاد کر رہا ہوں جس کلچر کے در رہ کر محبتیں سلامت تھیں, برکتیں تھیں, خاندان ملے ہوئے تھے, دل ملے ہوئے تھے, بچے ملے ہوئے تھے, طلاقیں نہیں ہو رہی تھیں, خلا نہیں ہو رہی تھی, بچوں میں جدائیاں نہیں ہو رہی تھیں, گھر ٹوٹ نہیں رہے تھے, लोग बीमार इतने नहीं हो रहे थे, इतने मेडिसन्स का मामला नहीं था, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन नहीं था, लोगों के दिल बड़े पुरसुकून अंदाज में थे। थोड़ा बहुत भाई बहनों के अंदर कुछ हो जाता था तो फौरन मतलब वो बैठ भी जाते थे, इस तरह का अपने इलाके और अपने घर और अपने दिल अलग करके नहीं बैठते थे। जोर मैं नहीं दे रहा, प्रेशर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज की जनरेशन को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपकी दूरी ने और आपकी सोच ने आपको कौन सा फायदा पहुंचा दिया है। अभी ऐसा लगता है बाद अवकात कि हम थोड़े आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन जब आप बड़े होंगे ना तब पता चलेगा। आप देखिए, बाद ममालिक ने ना, बाद ममालिक ने उसूल निकाला कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होंगे, राइट। दुनिया में बहुत उसको अप्रिशिएट किया गया, यार ये सही है। 50 साल के बाद हुआ ये कि बच्चे कम बूढ़े ज़्यादा, नौजवान कम बूढ़े ज़्यादा। अब उनको अपना ही कानून बदलना पड़ा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, नौजवान तो है ही नहीं। इसी तरह बाहर प्राइवेसी के नाम के ऊपर, इंडिपेंडेंसी के नाम पर ये कल्चर डेवलप हुआ जो आज मेरी जनरेशन सोच रही है। क्योंकि जनरेशन को भी या तो कहीं किताब से पढ़ कर सोच रही है, या किसी वीडियो को देखकर सोच रही है, कहीं किसी से उड़ती भी इसको भी आए कि भाई ऐसा भी हो रहा होता है। लेकिन आप जाकर वहाँ देखें कि उस जनरेशन को अलग करने के बाद आज, क्योंकि पेरेंट्स ने भी तो जनरेशन को अलग करने का वो था, कोई खुद वो अलग हो गए और बच्चों को अलग कर दिया, नतीजे निकला कि आज उनके पास बच्चे भी नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स भी नहीं है। आज उनके उनके पेरेंट्स के पास बच्चों की जगह पर कुत्ते रखे हुए हैं, और कल को उनके पास भी एक दो चार कुत्ते आ जाएंगे जिनको वो लेकर चल रहे होंगे। तो हालात जो बिगड़े, आप देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने अपने वालिदैन के साथ रिश्ता कायम रखा, अपने कजन्स के साथ रिश्ता कायम रखा, और रिश्तों की बाकायदा पहचाने करवाई कि बाहर शरीयत में रिश्तों की पहचान करो ताकि अपने रिश्ते बच्चे निभा सके। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि ईद के मौके पर, ख़ास तौर पर ईद के मौके पर, हमें अपने उन रिश्तों में, जिन रिश्तों में कोई बेपर्दगी का मामला नहीं है, उन रिश्तों को बाकायदा संभालना चाहिए, देखना चाहिए, मिलना चाहिए, इनकी गैर खैरख्वाही करनी चाहिए, इनमें खुशी बांटनी चाहिए, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मामला होना चाहिए। मैं पर्सनली तौर पर तो ये, अभी जैसे हमारे ये कज़न है आसिफ, अपने जमा होते रहते नहीं होते कज़न
जी?
हम जमा होते रहते हैं
भाई साहब। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, पहले भी मैंने ये बात कही थी, ये जो आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई ना, ये बिल्कुल होना इसी तरह ही चाहिए। एक पठान से देखा कि वो एक कबीले की सूरत में, एक पठान से आप सीखे, अगर आपके साथ कोई भी मसला है उसके साथ 20-25 आदमी उस कबीले के साथ आ जाएंगे आपसे मामला करने के लिए। मैंने बहुत पहले ये सोचा, मैंने कहा मेरा कबीला कहाँ, मेरा कबीला कहाँ है। अब मेरा कबीला ये था कि हमारे वालिद साहब उस वक्त भी इख्तलाफ होते थे ना, जैसे अभी आपने कहा कि जी बहन को बुलाएं, भाई को ना बुलाएं, तो ये इख्तलाफात हमारे दादा की फैमिली में भी थे। तो मैं अपने वालिद साहब के कज़नों को नहीं जानता था, तो मैंने कहा यार इस तरह तो पता ही कोई नहीं चलेगा। मैंने कहा मेरा कबीला बनना चाहिए, मेरा कबीला बनना चाहिए। मैंने उस दिन से ये तय किया कि जो मेरे जितने भी कज़न्स हैं ना, फूफी के बेटे, मामू के बेटे, चचा के बेटे, खाला के बेटे, उनकी गेट टूगेदर एक तकरीब होनी चाहिए। आई साहब गवाह इस बात को, पिछले 25-1 साल से मैं करता आया, हर साल, साल में एक दावत, दो दावत, तीन दावत। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे? उसका फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि मैं तो अपने वालदेन के, मतलब उन कज़नों को नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे बच्चे जो है ना, वो कम अज़ कम मेरे कज़न कौन है उनको पता है, उनकी औलादें बड़ी हो गई, वो उनकी दोस्ती बन गई। अब अगर कहीं छोटी सी भी तकरीब करनी है ना, तो एक दावत लिखनी है कि भाई अगर किसी का अकीका करना है, तो 400-500 बंदा मेरा कबीले का जमा हो जाता है, क्योंकि उनको जोड़ा। एक तो ये एक सोच थी जो मैंने किया, उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला, जो कि ये तरकीब दिलाई जा रही है आई साहब की तरफ से। लेकिन जो एक बात आपने और ये कही ना कि अब ये जो जनरेशन है ना, 2000 से जो पैदा हुई है, जब से इंटरनेट आया है, 2000 से लेके 2016 तक की जनरेशन को हम उसको जेन ज़ी कहते हैं, और उसके बाद की जनरेशन को हम अल्फा कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फास्ट हो गई है। उस वक्त पुराने ज़माने में वो ना नेट था, ना चीज़ें थी, गप्पे मारने के लिए होते ही रिश्तेदार थे। अब यहाँ इनको हज़ारों चीज़ें मैसर आ गई हैं। अच्छा, वालदेन का भी अपनी औलाद से जो है ना, वो डिक्टेटरशिप वाला जो मामला होता है ना, तो फिर जो आपने कहा कि एंजाइटी में चले जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से यहाँ तक के बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, बुरी तरह अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा गैप
आ गया है। आसिबा होना चाहिए ना, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग बैठते हैं
जी,
तो अच्छा ये जैसे आसिबा ने कहा, इन्होंने दावत की, कभी मैंने अपने घर पे दावत की, कभी मेरे किसी और कजन के यहाँ दावत हो गई, हम मिलते हैं, और हमारा मिलने का सिलसिला आज से नहीं है, एक जमाने से जारी है। इनके वालिद साहब ग्यारहवीं शरीफ की तकरीब होती थी तो खानदान जमा होता था, हमारे होता था तो मेरी अम्मा थी वो भी मुहर्रम की नहीं, ये सारी वो होती थी होता था। हमें याद है ना हम घरों में कैसे बैठते थे और हमको वो बिरयानी में नली पसंद होती थी, याद है?
उसमें झगड़ा होता था,
उसमें झगड़ा होता था, यानी कि वो देख पर बैठे मेरी अम्मा और निकाले ना कि ये इमरान को पहुँचा दे, वो अरे नहीं ये मेरे को, तो यूँ हम लोग ये आपस में ये सब होता था। लेकिन इतना खानदान हमारा जमा हुआ है, इतना खानदान हमारा जमा हुआ है, देखिए बहुत रेयर हुआ होगा, मैं 100% बहुत रेयर हुआ होगा कभी खानदान जमा हुआ ना सब लड़कर चले गए हो, बहुत रेयर हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे कि हम जमा हुए ना, अब इनके बेटे की उम्र है तकरीबन 22 साल की, ठीक है? तो अब ये नहीं है कि इनके बेटे को जबरदस्ती आसिफ भाई बोलेंगे कि नहीं ये इमरान और ये हम सब बैठे हुए ना तो आप भी यहीं बैठो, अब मेरे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे आ गए, इनके बच्चे आ गए, मेरे और कजन के बच्चे आ गए, सब बच्चे आ गए, सबके बच्चे भी 20-22-23 साल के, 21 साल के, 18 साल के नौजवान है, तो ये अपने तौर पर बैठेंगे, ये हमारे साथ नहीं बैठेंगे। और ये हमने भी किया है भाई, हमारे मामू और सब जमा होते थे तो हम अलग, अच्छा हमारे भी ग्रुप बना होता था, अब हम बैठे खानदान में, ये भी मेरा अपने मतलब के मामू का घर है, मामू साथ भाई है मेरे, अब ये हमारे भी तकसीम थी, यानी मामू चचा ये सारा एक अलग था कैटेगरी, वो इसके नीचे आए तो ये आसिफ भाई मेरे बड़े भाई और मेरे दीगर कजन जो इस एज में थे वो अलग थे, मैं और मेरे जो हम उम्र जो मेरे कज़न थे हम अलग थे, हमारे कोई इस तरह की तरकीबें ये नहीं होता, ये अलग घूमते थे हम अलग हो जाते थे। अच्छा जो हमसे नीचे होते थे, अब मैं से आपके नाम लूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, तो अब आसिफ भाई के नीचे उतरे तो फिर जैसे हमारी आती थी तो मैं और शाहिद भाई और अशफाक भाई ये सब अलग हो जाते थे, इसके नीचे उतरे तो जना वो अमाद और यूसुफ और ये सब अलग हो जाते थे,
ऐसे
तो ये सब अलग हो जाते थे, सब हम उम्र होते थे, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं होता था कि वो कि भाई ये बड़ों के साथ बैठो तो जनाब इसी के साथ बैठो। और ये इसी तरह हमारे खानदान की बच्चियों का भी यही आलम होता था, इसी तरह बड़े होते गए और मामू आते थे, हमें याद है ना मामू, मेरे मामू इनके चचा वो आते थे बाहर से तो सबकी नज़र पेटी पर होती थी, अब बैग खुलेगा उसमें से चीज़ें निकलेंगी, ये आएंगे तो ये निकलेंगी। अच्छा खानदान में इस तरह के मसाइल होते हैं, हमें भी पता है खानदान में मसाइल होते हैं, लेकिन जब सोच आपकी ये है ना कि सबको लेकर चलना है तो फिर यार आप इनको लेकर बैठो, आप इनको लेकर बैठो, जरा ये कर लो, जरा वो कर लो, थोड़ा उसका हाथ तंग है थोड़ा ये कर लो, उसका यूं कर लो, ये सब करा कर बैठे ना, मैं समझता हूँ कि जो एक अखलाकी और एक खानदानी अकदार और इस्लाम व दीन की रोशनी में जो है, अगर ये खानदान के कुछ लोग मिलकर भी ये करें ना, मैं आपको बताऊँ खानदान में लड़ाई नहीं होगी। यानी मैं ये मेरे मामूजाद भाई हैं, मैं इसका फूफीजाद भाई हुआ, मेरे खालाजाद भाई हैं, ये इनके फूफीजाद भाई हुए, इनका जो ननियाल है वो तो हमसे भी बहुत दूर हो गया ना, इनका ददियाल मेरे मामू हुए ना, लेकिन इनके जो ननियाल है ना वो भी बैठ जाए ना तभी हम मिलकर हम लोग बैठे होते हैं
दोस्तियां करा।
आपको शायद इसका अंदाजा ही नहीं है, एक दफा मैंने अपने घर पर एक ऐसी दावत की तो अब्दुल हबीब भाई को याद हमने बुलाया था, अब्दुल हबीब भाई ने बाहर जाकर अपने दोस्तों से सुबह बात किया, यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये खानदान को लेकर आप, हम तो करते रहते हो, हमने कजन्स में आपस में फासले नहीं करने होते, वो बैठते हैं बातचीत करते हैं और इनको पता है कि अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो आधे पौने घंटे का मेरा टर्न आ ही जाता है
सही।
और इनको कहीं ना कहीं कोई निकी की दावत या सिलसिला होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम लोग कोशिश ये करते हैं, ये मैं बता, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम उस पूरी मीटिंग के अंदर एक खुश तबई और खुशगवार माहौल हो, लेकिन किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को वो जिसको बद अखलाकी कहते हैं वो ना हो, गीबतें ना हो, किसी की इस तरह की चीज़ें ना हो, हम इससे अवॉइड करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा माहौल, दो दो तीन तीन घंटे बैठते हैं, रेगुलर तो कोई भी नहीं बैठता ना यार, अल्लाह नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अगर आप इस तरह लेकर चलते हैं और माहौल में बेपर्दगी ना हो, माहौल के अंदर गुनाहों भरा सिलसिला ना हो और आप रिश्ते निभाने के लिए बैठे हुए हैं, इसमें बातों का कुछ कमज़ोर खानदान के अफराद होते हैं, उनका डिस्कशन होती है बाकायदा। आपको शायद मैं आपके ये प्रोग्राम के जरिए भी नाज़रीन तक बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये नहीं मैं और खानदानों को जानता हूँ, और भी कई खानदान हैं कि फिर कमज़ोर जो खानदान के लोग थे ना, ये डिस्कशन है ये आज आपकी जनरेशन में डिस्कशन नहीं होंगी, ये डिस्कशन है आपके ऊपर की जनरेशन कर रही होती है, आपकी जनरेशन तो डिस्कशन करती कोई नहीं है कि कौन तकलीफ में है, कौन परेशान है, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी नहीं हो रही है, ये तो आपके घर के जो बड़े होते हैं ना इनको परेशानी होती है, इनको टेंशन हो रही होती है, क्योंकि अगर जनरेशन क्योंकि जनरेशन अपनी जिंदगी जीने पर तुली हुई है और हमारे बड़ों ने, जैसे मैं अपने वालिद की बात करूँ, इनके वालिद की बात करूँ, हमारे आपके जो पेरेंट्स हैं उनके, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने ख़ानदान की ज़िंदगी जी है। हम अपने बड़े मामू को पहचानते जो इनके बड़े चचा थे, सबको लेकर चलना। आपके खानदान में भी ये हुआ, क्या कहते हैं जी हमें, आप अभी एक बुजुर्ग से ताइत तो ले लो, वरना अभी ये
बुजुर्ग तो ये है ना, इन्होंने एज नहीं बताई, बाकी बता दिया कि आप दोनों से बड़े।
नहीं, इस पर मेरा ख्याल है शायद हमें सबसे ज्यादा उम्र इनकी बड़ी होगी, ये तकरीबन नहीं तो नहीं 60 साल के होंगे, 60 से 61 साल के, नहीं ये इस्लामी तारीख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 60 61 साल के होंगे, मुझे पता है। जब मैं इस्लामी 57 का हूँ तो मेरे से तकरीबन 3 साल तो कम से कम बड़े हैं,
61 साल के हो गए,
60 61 से तो नीचे में है नहीं, ये पूरा बुरा पा इनका नजर आवे ना, जरा थोड़ी नजर आवे आदमी
तो मैं इनको अंकल,
मगर नहीं अंकल नहीं, आप इनको ये पूछो कि इन्होंने ये सब क्या करते हैं कि ये 60 साल के होने के बाद भी नजर नहीं आते, ये देखने की बात है। हो सकता है इसमें खानदान को लेकर चलना भी शामिल हो,
उसका कीमिया मालूम करते
हैं, वही तो गुफ्तगू हो रही है।
अच्छा,
वही तो गुफ्तगू हो रही है।
इसमें ये बात बिल्कुल आपकी जो बात है इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि माशाल्लाह हमारी फैमिली में भी ऐसे एक दो हैं, उनमें मेरा नाम नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन ऐसा है कि जिस तरह निगरान शुरू फरमा रहे ना कि इस तरह गेट टुगेदर ये करना, और फिर खासकर जैसे मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं तो हमारे घर में भी सालहा साल से सिलसिला होता है कि ईद वाले दिन जो है वो भाइयों की फैमिली जो है ना वो हमारे घर आती है, क्योंकि माँ का घर कहलाता है।
या जी नसीब वाले हो, मैं आप सबको बताऊँ, मेरे जनरेशन को बताऊँ, मेरी अम्मा को इंतकाल हुआ, ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ फिर भी, वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि मेरी अम्मा के जीते जी हमें पता था कि हमारे घर पे सब आएंगे, ये भी आएंगे,
सब आते,
मेरे खालाजाद भाई भी आएंगे, सब आएंगे, मेरे मामू भी आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे घर में थी। अब मेरी अम्मा चली गई दुनिया से, अब हमको पता कि कोई भी नहीं आएगा,
ऐसे ही
मेरे बड़े मामू, ठीक है, अब वो हो तो सब आना है,
सब आएंगे,
अब कोई भी नहीं आएगा,
नहीं
ये जो बड़े गए ना, बड़े गए तो समझे कि हम, मुझे तो ईद के दिन पता है ना, ईद के दिन जैसे कि अब जैसे विश्व मुझे को अभी ईद का दिन मुझे को पूछेगा घर में कि क्या ले, क्या घर में रखें, मेरे कहा आएगा कौन के घर में रखेंगे, हम ही होंगे, क्योंकि वाना वो क्या भाई ये रख लो ये रख लो ये रख लो। अब आसिफ भाई जैसे मेरे आसिफ अपनी पुपी से मिलने आते थे, राइट, अब पुपी चली गई दुनिया से, अब आसिफ आते तो आसिफ भाई के साथ इनके सारे बच्चे और बच्चियाँ सब आते थे, पूरा कुंभ आता था, मेरा खालाजाद भाई वो आएगा तो वो आएंगे, तो मेरे मामू आएंगे, तो सारे बच्चे बच्चे सब आएंगे, फिर वो क्या वो लिफाफे तैयार करना, ये कितनी खुशी होती है, यानी बिल्कुल हमारे घर में मेरी अम्मा लिफाफे तैयार करके रखती थी, अच्छा आसिफ को लिफाफा अलग बोलेगा इसकी उम्र के हिसाब से, अच्छा ये इस उम्र में भी इनको लिफाफा मिलेगा, मेरे को मेरे मामू मेरी इस उम्र में भी, मेरे चाचा इस उम्र में मेरे को लिफाफा देते थे, हालांकि वो लिफाफा वही पुराने वही होता था, वो रेट नहीं बढ़ा था हमारी ईदी का, ईदी का रेट वही था, यानी ये सही बता रहा हूँ, वो 25 रुपये अगर मेरे को मिलते थे ना शुरू में, तो बाद में 25 रुपये मिले, नहीं 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 कोई महंगाई वहंगाई नहीं हुई, नहीं हमारा इंक्रीमेंट लगता ही नहीं ईदी का, हमारा ईदी का इंक्रीमेंट था ही नहीं, ईदी वही चीज़। लेकिन हाजी अपने शहजाद भाई आप यकीन माने ना माने, उस 25 रुपये में 25 लाख से ज़्यादा की लज्जत थी, वो हमें वो 25 रुपये की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो जाते जाते जो यानी मेरी खाला नहीं आ सकती थी घर पर बीमारी की वजह से, मगर मेरे लिए ईदी भिजवा देगी, बोले उसमें 10 की नोट हो, 10 की नोट नहीं थी, मैं कह रहा हूँ ईदी भिजवा देगी, यानी मेरी इस उम्र में भी मैंने अपनी खाला की ईदी वसूल की है।
ये ईदी का ताल्लुक रिश्तेदारों से
नहीं है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इस अकदार को, इस रिवायात को, इस मोहब्बतों के अंदाज को क्या आज कंटिन्यू किया जा रहा है?
दूर भी तो आपने किया हुजूर, बच्चे की शादी करा दी
निगरानी शूरा ने,
नहीं आपसे मुराद निगरानी शूरा नहीं है।
अच्छा,
मैं ये कह रहा हूं फैसला मुश्किल हो गया, तो ये है किस तरफ,
मैं तो तर्जुमा नहीं करूंगा, देखे
हो जाएगा चलो, लेकिन दूर भी आपने किया, आपसे मुराद निगरानी शूरा ने नहीं, बेटे की शादी करा दी। अच्छा इससे पहले ले आते हैं, शादी से पहले जब उसकी एजुकेशन लाइव है उसमें उसको बोला तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे यही बनना है, तुझे यही बनना है, उसको डिप्रेशन का मरीज बना दिया, ना वो डॉक्टर बनता है ना वो जो चाहता है वो बनता है। अच्छा फिर उसकी शादी करा दी भाई, उसकी शादी कराने के बाद अलग भी तो आपने करवाया है ना, अलग घर दे दिया, अलग आपने कराया है ना, तो वो आपके साथ उसका जॉइंट रहने का जब मामला ही नहीं बना है, वो शुरू से आपके साथ रहा लेकिन फिर आपने उसको डिस्टेंस किया, आपने उसको अलग किया, अब आप चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा मेरी तरह वही खानदान को लेके चले। जैसे अभी आपने अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं, अभी वो तो आपके मेमोरी में सेव थे और आपके जो अपर लेयर में सेव हैं वो आपने शेयर कर दिए, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने खुद अपने आप को अपने बच्चे से दूर किया है और उन औलादों को
जहां ऐसा हुआ हो उसके देख हर चीज को हम मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए अम्मार भाई, आप तो भी तो इनकी साइड ले रहे हैं, बिलाल भाई की बारी आएगी, कौन बाप अपने बेटे की रुखसती करता है? बाप बेटे की रुखसती नहीं करता, और बहुत कम इस वक्त औलाद होगी जिसने अपने अपने पैसों से सारे घर और सारा कुछ करके दिया होगा, उसमें बाप का कंट्रीब्यूशन शामिल होता है, अगर जो उसने भी किया तो बाप का भी कंट्रीब्यूशन शामिल होता है, मगर बाप ये नहीं चाहता कि ये जाए तो फिर घूर कर ना आए, और जो सेपरेट किया है या जैसा कुछ किया है तो उसकी जिंदगी को एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए किया है, ना कि खुद से अलग करने के लिए किया है। ये तो उल्टा एक है ना, एहसान पर एहसान है कि इसमें तो मतलब वालिद साहब को या वालिदा के तो मजीद एहसान मानने चाहिए कि ये जाए और आए और रब्ता रखे अपने वालिदैन के साथ।
उम्र इतनी नहीं थी जिस उम्र में उसे घर से अलग कर दिया गया।
अरे भाई तो भी 25 साल की उम्र में अलग हुआ है, कहां से हुआ है? कौन बोलता उम्र नहीं थी, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पता कर लिया।
जो अब नहीं,
आप 25 साल की उम्र में छोटे रह गए तो हम क्या करें भाई?
भाई आई साहब ये देखिए,
आप जिसको कह रहे हैं कि इनको आपने सिखाया ही नहीं, तो 22-23 साल तक इसको क्या कराए? 22-23 साल तक वो नहीं देखता था? 22-23 साल तक उसने वालिद साहब को देखा नहीं कि वालिद साहब किस लेगेसी को लेकर चलते रहे?
वालिद साहब ने तो उसको इस नेच पे पहुंचाया है, वो जो करना चाह रहा था वालिद साहब ने उसको करने नहीं दिया। अब जब वालिद साहब ने उसको अपनी मर्जी से अलग करवाया तो वालिद साहब भुगते?
मैं वालिद साहब क्यों भुगते?
22 साल तक तो उसकी एजुकेशन पूरी हुई है अभी।
हाँ तो किसने कराई?
वालिद साहब ने कराई।
एहसान तो माने,
एजुकेशन पूरी हुई, अब लो भाई शादी कर लो।
उसको अंगूठा छाप रखता वालिद साहब तो पता चलता,
थोड़ा जिंदगी तो एंजॉय करने दो, उसको शादी में फंसा दिया। अब वो शादी में फंस गया, अब वो अलग हो गया, घर का राशन पानी सब चीजें उसे अकेले नहीं करनी है, फिर बोल रहे हैं हफ्ते वाले दिन घर आके भी मिलो। भाई नहीं है उसके पास टाइम।
इसके वाले साहब ने किया ये सब कुछ, ये जो नहीं कर रहा ना, इतनी सहूलत और इतनी जिंदगी में प्रेशर होने के बावजूद भी वो नहीं कर रहा, इसके वाले साहब ने तो किया था।
पुराना दौर था ना भाई साहब, अब ये नया दौर है, अब नई मसरूफियात है।
इसे शादी हो गई, शादी करके अब वो अलग हो गया, अब वो है उसकी बीवी है या बच्चे वगैरह जो भी है। अब इसके अंदर मसला ये है कि अगर अब बीवी के साइड के अगर खानदान वाले आ रहे हैं या उसकी अम्मी वगैरह मिलने आ रही हैं तो वो बड़ा अच्छा सा एक इत्माम हो जाता है। अगर शोहर बोले कि भाई अगर मेरी अम्मी आ रही हैं या मेरे अब्बू आ रहे हैं तो वो उसके अंदर जो है वो औरतों का थोड़ा सा एक वो एक मसला हो जाता है उनको ना कि जैसे तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर कुछ मदनी पूर इशात फरमाए कि अगर बीवी थोड़ा सा साथ दे तो ये जो रिश्तों की ये है वो कामयाब हो सकती है, एटलीस्ट ये अम्मी अब्बू के लिए तो एक अच्छा सा एक वो हो सकता है।
ये ना अलग होना भी एक मैटर है कि ना एक तो कोई वसाइल की कमी या किसी वजह से अलग होते हैं, और आज के माशरे में ना बीवी अलग करवाती है।
हाँ, वो नहीं करवाया, बीवी नहीं अलग करवाती
है। ना कि ना बाप थोड़ी बेटे को रुखसत करता है, शादी के बाद ना बीवी रुखसत करवाती है।
घर अलग देना ये रुखसती तो नहीं है?
नहीं,
मैं आपको
इसका हल तो है जो कह रहे हैं कि बीवी की वो खानदान से आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा इत्माम होता है, शोर की तरह से है तो उसका सर में दर्द हो जाता है। तो इसका तो हल दिया है कि अम्मी आ रही हैं, अब अम्मी अम्मी आ रही हैं ये बोल दो खाली उसको, तो इत्माम कर दे, पता चले कि वो अम्मी इसकी नहीं है, मेरी अम्मी आ गई है।
इसका हल नहीं है। जब है ना लड़के ने शादी के बाद अगर बीवी के कहने पर अलग हो गया ना, तो बस ये जब बात मान ली ना तो फिर ये है ना उसकी
उसकी बीवी की अम्मी आने
आना है, बेटे को ये
सोचना है।
बाप ने बाकायदा कार्ड छपा कर रुखसती के लिए कार्ड पे लिखा था रुखसती, तकरीबे रुखसती लिखी है बेटी के बाप ने कि मैं अपनी बेटी रुखसत कर रहा हूं। क्या वजह है कि बेटी जैसे ही बाप के घर से रुखसत होती है इसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत बढ़ गई होती है 100%, जिसकी बाकायदा रुखसती ऐलानिया रुखसती हुई है, बेटे के दिल में माँ बाप की मोहब्बत क्यों नहीं बढ़ी? वो क्यों मानती है कि मेरे माँ बाप ने मेरे शादी की, मेरी शादी पर ये सब कुछ किया, मुझे पाला पोसा, ये सब कुछ किया? बेटी की मोहब्बत अपने माँ बाप से रुखसती के बाद बढ़ जाती है, उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, उसकी मतलब अटैचमेंट बढ़ जाती है, तो बेटी की क्यों नहीं बढ़ती?
बेटी की इसलिए बढ़ जाती है कि उसको है ना जाहिर शादी के बाद भी रुकने जाना होता है, रुकने जाने के बाद है ना यहाँ पे तो घर के मैटर में सारी बातें करनी है, फिर वहां जाके भी है ना दोबारा माँ के घर पे भी भले भाई हो शादीशुदा हो दूसरे बहने हो वहाँ पे कुछ ना
तो
कुछ
बेटे ने माँ बाप के घर नहीं आना होता, जो खाली बेटी ने जाना होता अपने माँ बाप के पास, उसको तो वैसे ही हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन या महीने में 2-3 दिन के लिए परमिशन लेकर जाना पड़ता है। शोहर के लिए तो ये भी नहीं है, बेटे के लिए वो तो जब चाहे जा सकता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, वो क्यों नहीं जा रहा?
बाबा को तो मना करती कि वहां नहीं जाना
है। वो तब होता है, इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ हाजी अमीन, ये उमूमी, देखिए मैं 100% नहीं बात करूंगा, नॉर्मली ये तब होता है कि जब औरत आई है, औरत को तो पता ही नहीं है ना कि इसका जो शोहर है वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो वेरी फर्स्ट डे है, सेकंड डे, थर्ड डे, महीने दो महीने के अंदर अंदर औरत रियलाइज कर लेती है कि मेरा शोहर अपने माँ बाप के साथ कैसा है, मेरा शोहर अपने भाई बहनों के साथ कैसा है। बस समझे कि अगर वो औरत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नेकी और परहेजगारी के और अच्छे अखलाक के तौर पर, तो वो वहाँ पर अपने शोहर की तरबियत करना शुरू कर देगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, माँ बाप के साथ अटैच रहें। मगर ये कम औरतें हैं, ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन मोस्टली क्या होगा कि जब औरत ये देखती है ना कि मेरा शोहर अब मिसा के तौर पर, उसको पता है कि ना ही अपने बाप को लिफ्ट करा रहा है, ना ही अपनी माँ को लिफ्ट करा रहा है, ना ही अपने भाई बहनों को लिफ्ट करा रहा है, चंद महीनों के अंदर अंदर औरत ढल जाती है उसके अंदर। जब ये ब्लड रिलेशन होकर ऐसा कर रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं ऐसा करूं। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त की जनरेशन की बात कर रहा हूं, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा आप लोगों के साथ।
इल्म नहीं है कि ना इस वक्त है ना शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जिस बच्चे को है ना छोटे से इतना बड़ा किया, पाला पोसा, शादी करवाई, तालीम दिलवाई, उसके बाद वो उस बूढ़े माँ बाप के बाद वो वाहिद सहारा है। बाजो वाहिद सहारे होते हैं, बाद दो तीन बेटे होते हैं, शादी हुई अलग, कौन करवा रही है, बीवियां करवा रही है, बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। अब उनको देखने वाला कौन है, उनको करने वाला कौन है, ये आज के दौर में ये हो रहा है। हजरत
मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्ली दोबारा में 100% पर बात नहीं कर रहा, अगर वो भी है तो ये भी है। लड़के असल में लड़के पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता। अच्छा अब चलते हैं कि लड़का तो अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट रखना चाहता है, अब प्रॉब्लम आया कि उसकी बीवी इसको अटैचमेंट नहीं रखने देती, आप यही कह रहे हैं ना?
ऐसा ही है।
तो वहाँ तरफ से है, चाहे शादी के बाद माँ बाप ने अलग किया या चाहे बीवी उसको लेकर अलग चली गई, जो भी हुआ बस वो किसी तरीके से
अलग
घर में अब वो जा
जब पहले दिन से अलग
अब
था,
आप ये
अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अलग हो गया।
अब आप ये मशवरा दें एक या ये बताएं कि लड़के को भी और लड़की को भी, लड़के का तो कुछ कुछ आपने बताया कि लड़के खुद ही ऐसा फील करवा देते हैं बीवी को कि उसको पता चल जाता है कि इसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी फिर वो छोड़ देती है। फिर कभी कभी अगर शौहर बोलता है कि यार वो फुला आ रहे हैं तो वो बोलती है छोड़ो ना यार क्यों इसमें वो, मतलब फिर वो जहन ऐसा बना हुआ होता है तो वो फिर वो कहानी ख़राब ही हो जाती है। तो दोनों को ये मशवरा दें कि अगर मिसाल के तौर पर एक शौहर चाहता है कि मेरे घर में मेहमान आएँ और ये मतलब ये गेट टुगेदर हो, मेरे कज़न्स आएँ या मेरे अम्मी अब्बू आएँ, भाई बहन आएँ, तो औरत के लिए भी कुछ ऐसा बताएं कि वो इसको एक्सेप्ट करे और वो अच्छे से जो है वो शौहर के साथ तआवुन करे, और मर्द को भी कुछ ऐसे टिप्स हैं कुछ ऐसा बताएं कि वो इसको किस तरह से कंटिन्यू कर सकता।
बिलाल भाई इसके लिए थोड़ा सा पीछे से चलना पड़ेगा कि शादी किसे की है। अगर शादी नेक औरत से की है तो ये काम ऑलमोस्ट आसान हो गया, 100% नहीं कहता
तो होगा ही। अब बताएं चाहे वो जिस
इस्तखारा कर लिया साहब शादी करने से पहले तो अभी नेक नहीं मिली तो अभी क्या शोहर जिंदगी भर
नहीं। वो तो देखा जाता है कि आपने जिससे इस्तखारा किया अपनी जगह पर है, लेकिन ये देखा जाएगा कि जिससे औरत से शादी हो रही है, औरत ये देखेगी कि जिस मर्द से शादी हो रही है, मर्द में भी नेकी होनी चाहिए, औरत में भी नेकी होनी चाहिए, और उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी। ठीक है मैं मानता हूँ मैं आपके टॉपिक पर आता हूँ, लेकिन सब तो इस वक्त देखने सुनने वाले सारे तो मैरिड नहीं है ना, अनमैरिड भी तो होंगे, वो भी तो सोच रहे होंगे कि यार चलो वो तो जो हो गया हमको तो हल निकाल के दे। तो इनके लिए तो ये है कि आप लोग ये देख ले कि आपका रिश्ता जहाँ हो रहा है वो उनके ख़ानदानी मामलात कैसे, यानी ये भी देखा जाता है। इसलिए कहते हैं खानदान के साथ ताल्लुकात करके यानी आपस में मुलाकातें करके रिश्ते करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ख़ानदानों में जुदाई तो नहीं है, खानदान दूर तो नहीं है। जब लड़की ने देखा है कि मेरे वालिदैन और मेरे चाचा और ये सारे मिले जुले से रहते हैं तो उसको भी मिले जुले से रहने की आदत होगी। अगर वो आपको लगेगा ये सभी सेपरेट है तो वो भी सेपरेट रहने की आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखी जाती है, लड़कों में भी देखी, लड़कियों में देखी जाती है। खानदानों में जुदाई हो रही होती है पता चल जाता है। पता है कितनी बेटियों की शादियां क्यों नहीं हुई हैं, कितनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं होती कि उसकी माँ की रिपोर्टेशन खराब है। सही है, उसकी माँ की रिपोर्टेशन खराब है, अरे यार इसकी बेटी से शादी नहीं करानी, या उसके बाप की रिपोर्टेशन खराब है यार इसके बाप से शादी नहीं करानी, पता चल जाता है ना। वरना कई घर ऐसे हैं जिनमें शादी करने वालों ने ना लड़के को चेक किया ना लड़की को चेक किया, सिर्फ ये देखा कि बेटा किसका है बेटी किसकी है।
एक बच्चा है जानने वाला, वो एक कॉलेज में एक लड़की को पसंद कर बैठा, दोनों इंटरेस्टेड हैं कि शादी हो जाए। आपने कहा ना माँ की या बाप की, उसकी बाप की रेपुटेशन बहुत ख़राब है, वो मेरा दोस्त परेशान है, कि मैं क्या करूं, बेटा चाह रहा है कि यहीं हो, ऐसी सूरत में लड़की का कोई कसूर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए?
पहले तो ये था कि ऐसी जगह पर तालीम और तरबियत के लिए जो भेजा कि जहाँ ये पेज लड़ गए, एक तो सारी पेरी खराबी तो वहीं हो गई, अब चलो जो खराबी थी वो हो गई। ऐसे मौके पर वालिद साहब को बड़ी हिकमत और बड़ी दाना और बड़ी मसले से काम लेना होता है, क्योंकि लड़की का अगर वहाँ पर दिमाग फंस चुका है, दिल फंस चुका है, और वालिद साहब को सारी स्टोरी पता है, बैकग्राउंड ये है, तो वो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होगी।
नहीं, बेटे को भी पता है, उसके उस दोस्त ने मेरे बेटे को भी बताया कि ये पोजीशन है, कह रहा है अब उसमें बच्ची का तो कसूर नहीं है कोई।
नहीं, बच्ची का कसूर नहीं, वो खानदान को देखा तो जाएगा, कुफ देखा जाएगा।
सूरत में जब ये प्यार का टांका भिड़ गया है तो क्या करना चाहिए?
शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से समझाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर लड़के ने
समझाने से इश्क का भूत उतर जाएगा।
अगर ये है भूत, तो भूत का नतीजा उतरना ही है, भूत हमेशा उतारा जाता है।
दुश्मन होते हैं ना जो, फिर वो इस तरह करते हैं, फिर ना लंबाई करते हैं, नहीं समझ में नहीं आ रहा तो लड़का सही नहीं है, घर
समझाना पड़ता है और समझ जाते हैं।
दुश्मन नहीं बनने चाहिए हाजी साहब, देखें माशरा इश्क जो मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत इसलिए करते हैं कि शादी करना चाहते हैं, एक अच्छा अमल है ना, तो शादी करवाए।
इसमें ये होता है कि अगर इत्तेफाकी किसी भी वजह से अगर लड़का और लड़की में कहीं कोई ऐसी पसंद की चक्कर चल गया, तो इसमें फिर ये होता है कि माँ बाप कुफ तो देखेंगे, कुफ तो ये शरई मसला है कि मतलब कि वो खानदान नसब वगैरह ये देखा जाएगा, कुफ देखना ये शरई मसला है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है।
लेकिन अगर कोई वो बाप बुराई में है और बच्ची बिल्कुल बेकसूर, वो
देखा खानदान देखा,
इसमें यही तो बोलते हैं कि वो तो लड़का लड़की ने साथ रहना ना, माँ बाप से क्या लेना,
यही तो रोना है कि लड़का लड़की ने साथ अकेले नहीं रहना होता। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात हो रही थी कि खानदान ने साथ रहना होता है, खानदान के साथ ही लड़की ने रहना होता
है, तो रह ही नहीं रहना, ये तो पहले की सोच थी ना, अब तो ऐसा
है, मिलना ही नहीं है, लड़का लड़की अलग शादी, यही ट्रेंड चल रहा है।
इसके बाद टूट फूट भी तो हो गई है, जब खानदान होता है ना तो जोड़ के रखता है, अल्लाह ना करे 19-20 हो जाता है ना, तो माँ बाप बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह के रिश्तों में बड़े इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अच्छा, इसमें तो एक और प्रॉब्लम ये होता है कि इस तरह की जो शादियां कर लेते हैं ना, तो शुरू में तो इनको लगता है कि बस हम जैसे मोहब्बत करने वाले ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड था वो गर्लफ्रेंड है, कबूले कबूले के साथ वो शोर हो गया, वो बीवी हो गई। वो जो रिश्ता तब्दील हुआ ना, जो रिलेशन तब्दील हुआ, सोच तब्दील हुई, अब ना वो गिफ्ट रहा, ना वो फूल रहा, ना वो तैयारी रही, ना वो बीमारी रही, कुछ भी ना रहा। अब वो बोला कि पहले तो तू ऐसा था, बोला पहले तो तू ऐसी थी। अब जब इन दोनों के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा होती है ना, अब ये दोनों इस पोजीशन में भी नहीं है, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों इस पोजीशन में नहीं कि जाकर मैं माँ बाप को कह सके कि हमारे दरमियान कुछ हो गया है। मैं नहीं कहता कि माँ बाप के किए हुए रिश्ते टूटते नहीं है, मगर वहां पर अभी इनको संभालने के लिए वालिदैन और खानदान होते हैं, एक दूसरे खानदान को पहचान रहे होते हैं। यहाँ मतलब के जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं, अगर लड़के के बाप में और लड़की के बाप के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, दोनों को मिलना ही नहीं है, दोनों के अंदर प्रॉब्लम है, तो अगर लड़का लड़की प्रॉब्लम हो गया तो बोलेंगे भाई कोई रास्ता ही नहीं है। यानी ऐसा ये मैंने खानदानों के जो इस तरह के मामला देखे हैं, लड़का और लड़की के बाप ने मिलकर कई मामला तो हल किया है, दोनों के वालिदैन ने मिलकर कई मामला को हल किया है, और अगर यहाँ ये जुदाई हो जाएगी या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो चलना बहुत मुश्किल
है। हमारे बड़ों की गलती
है। 6 केस मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले शादी की, पसंद से माँ बाप को इन्वॉल्व करके माँ बाप आए, रिश्ता मांगा, जिसमें से 4 के तो माँ बाप ने बच्चियों को समेत शादी के बाद उनको घर से अलग ही कर दिया कि भाई तुम अपना जानो, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बच्चे ज्यादा मतलब हो गए हैं, और यहाँ तक कि अब उनके खर्चे नहीं चल रहे। तो जो आप कह रहे हो ना कि माँ बाप, अब लड़की का बाप तो मर गया, इंतकाल हो गया, लड़के का बाप लड़की को कहता है कि भाई ये तुझे अब यतीम खाने में रखे, बच्चों को यतीम खाने में हमने 1 रुपया लड़के की मदद नहीं करनी है, ठीक है, तुमको बेटा तलाक चाहिए तलाक ले लो, मेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं। ऐसे 4 से 6 केस मेरे पास आए हैं सिमिलर, जिनके 3-3, 4-4, 5-5 जरूरी नहीं सबकी एक जैसी सोच। बहुत सी जगहों पे लड़के का बाप भी हाथ छुड़ा देता है, वो सरपरस्ती वाला, वो जो आप
कॉन्सेप्ट, मेरे पास वो केस आया था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लड़के के बाप के साथ बड़ी तरकीब से बात की, उसका बेटा भी मेरे साथ पास आया था, तब क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है सेटिंग हो गई, समझाना पड़ा, एक लड़की का बाप मेरे पास आया था, वो हाजी आसिफ ये कहता हुआ आया था कि मुझे मेरी बेटी को तलाक दिलानी है। अरे खुदा का खौफ कर, तलाक दिलाने की बातें कर रहे हो? कभी बाप अपनी बेटी को तलाक दिलाता है?
ऐसा बहुत
मुझे पता है।
वो रोज मर रही है उधर उसके पास साथ।
नहीं, वो मर असल में
वो तंज मार रहा है, ताने मार रहा है, हाथ मार रहा है।
अर्ज कर रहा हूँ
फिर वो बाप क्या करेगा?
नहीं, बाप अर्ज कर रहा हूँ कि मैं नहीं कहता कि एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट के लिए मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ। घर में आग लगी है ना, मैं तलाक को यूं समझाने की कोशिश करता हूँ, घर टूटने को। अगर घर में आग लगी है ना तो पहले कोशिश की जाएगी आग बुझाई जाए। निकलने का घर से रास्ता तभी है कि जब आपको लगेगा कि सिवाय हमारे जलने का कुछ भी नहीं रहा, तब आप अपनी जान बचा कर निकलोगे, अदरवाइज आग बुझाने की कोशिश करें। ये मिसाल मैंने दी है, कोशिश करें कि ये हो जाए। उसी वाली साहब से मैंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक घर चल रहा है और बहुत मतलब नॉर्मल। देखो 19-20 होता है। अच्छा, अब होता यहाँ क्या आसिफ भाई, और कि जब बाप को ये होता ना बेटी के साथ ये हो रहा है, बाप कभी अपने दामाद के साथ बैठा नहीं है। ऐसे आपको एक नहीं सैकड़ों केस मिलेंगे कि ठीक है मैं अपने दामाद से बात करता हूं, बेटी वहां ना बैठे, ना वो अपनी बेटी का वकील बन के जाए, वो अपने दामाद का जैसे कि वालिद बैठा हुआ है, और दामाद को लगे नहीं कि ये इस वक्त अपने ये मेरी बीवी का वकील आया है। ये मैं अपनी एक हिकमत या मैं जो मेरी नाक की शक्ल में आता वो बता रहा हूं। अब पहले बाप ये सवाल करे अपने दामाद से कि बेटा पहले तुम बताओ कि तुम्हें मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है। उसको ये ना बोलेगा तेरी वजह से मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, वो अपनी भड़ास निकालेगा। ठीक है, निकालने दे, भड़ास निकल गई। अब बाप का काम है देखे वाकई बेटी का कसूर है कि दामाद जल्ला दे या बेटी उसको उकसाती है। बाद होकर लड़की उकसाती है और वो उकसाने पर वो जो रिएक्शन देता है ना, तो वो चूंकि अपने रिएक्शन की कहीं कंप्लेन नहीं करता, और जैसे ही रिएक्शन होता है वो लड़की फोन उठाती है, बोलती है कि मेरे साथ ये बदसलूकी की। नहीं करनी चाहिए था उसको, ये भी सब्र करना चाहिए था, लेकिन कम से कम उसको पूछ तो ले दामाद से कि तुम्हारे साथ क्या हो ऐसा, बेटा क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा। हो सकता है कि बेटी का कसूर ज्यादा निकले वहां। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर बाप बेटी को समझाने बैठेगा ना तो बेटी को सर झुकाकर समझना पड़ेगा। सुसर समझाएगा ना अपनी बहू को, तो सुसर समझाएगा तो बहू समझेगी कि ये अपने बेटे की फेवर कर रहा है, लेकिन जब बाप खुद अपनी बेटी को समझाएगा। अच्छा, अब यहां बात गलतियां किसकी होंगी, दामाद की होंगी। वहां पर दामाद का अगर बाप वाली साहब हैं तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करें कि देखो ये मैंने सुना है, आप भी चाहें तो अपनी अपनी बहू से सुन लें क्या प्रॉब्लम है, फिर दोनों मिलकर अंडरस्टैंडिंग करके घर चलाने की कोशिश करें। मैं जो बातें कर रहा हूँ अफसाने नहीं है, कहानियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही मेरे ये तजर्बात मुशाहदे, और मैंने इस तरह के मामलात को देखा है और अल्लाह का शुक्र हल करने की कोशिश की है और मामलात हल हुए। घर टूटने पर तो मैं कभी भी फेवर में नहीं होता कि घर टूटे, लेकिन बाद अवकात बेटियों का कसूर होता है बाद अवकात। अच्छा, ये भी तय है कि बाद अवकात आदमी ही बड़ा ही अजीब होता है। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं, आदमी अजीब होता है। रिवायत में आता है कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले आदमी को बूढ़ा बना देती हैं, ये रिवायत मौजूद है, इमाम गजाली अलैहि रहमान ने लिखी है यह हलूलों में रिवायत। बास औरतें इतनी चर्ब जबान, इतनी तेज, इतनी बद अखलाक होती हैं कि आदमी सिर्फ बच्चों की वजह से जिंदा है, वरना शायद खुदकुशी कर लेता माज अल्लाह।
और ये इसको वाइस वर्सा कर ले कि
मर्द भी ऐसे होते। तो अब इसमें आसिब ये होता है कि वो है ना कि जब दो फरीक के अंदर दरमियान, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अगर मसला ऐसा हो तो दोनों तरफ से पंच बिठाया जाए, ये कुरान करीम ने रहनुमाई की है, और दोनों की नीयत सुलह की हो, ये कुरान करीम है।
पंच है ही नहीं,
नहीं बनाना पड़ता है।
कौन?
दोनों तरफ के खानदान के लोग
नहीं बैठने चाह रहे।
तो ये
लड़के के वालदेन तो साफ कहते हैं कि हमें बैठना भी नहीं
होता। अच्छा, हम वालदेन ही को समझा रहे हैं ना कि आपकी जिद और आपकी अना और आपकी इस वजह से, क्योंकि वो जिसका मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ ना, वालिद साहब ने यही हरकत की थी कि नहीं बैठ कर बेटा है ये है वो है, कोई मुझे शायद मेरे ख्याल दिनों लगे अलग अलग सेशन के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, रब का करम है।
अच्छा, इसमें भी यही है ना कि अगर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी तो ये लोग बड़े बैठने के लिए तैयार नहीं है, अगर ख़ुद करा देते हैं तो फिर वो बैठ के सुलह वगैरह भी करवा लेते हैं। तो अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर भी ली थी तो उसने कोई मतलब कोई हराम काम नहीं, नहीं, मतलब
नहीं निकाह किया था, शादी से पहले कई हराम काम हुए होंगे, नाजायज काम हुए होंगे, मिलना जुलना, तोहफे तोहफे जो भी है, मतलब वो हम उसकी हम चूंकि ये मजहबी चैनल है, इस्लामी चैनल है, हम कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, फेवर नहीं करेंगे, राइट। बट हम वर्स कम टू वर्स चलते हैं, हम एक उस पर सिचुएशन पे चलते हैं कि शादी हो गई, अब हो गई है, अब इन्होंने एक जायज तरीके से निकाह कर लिया ना, अब निकाह कर लिया, अब वो आपकी बहू तो हो गई, जबकि और कोई शरीर खराबी नहीं है, तो अब आप दिल बना रखें और इनको कबूल कर लें।
आप ये भी कहते हैं जिद छोड़ दें, जिद्दी मत बने, वालिदैन जिद्दी बन जाते हैं।
हाँ बन जाते हैं,
तो वो वालिदैन जिद्दी ना बने उस पर भी कुछ कहें।
और शादी से पहले
क्या बोला
आपने, बहुत कम बोला,
कितना तो बाकी आपने बोल दिया।
हाजी साहब शादी से पहले भी कुछ बात करें ना
जी, पुरानी जनरेशन पे तो उनकी गलतियां तो आप दिखा ही नहीं रहे, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी मर्जी थोप देते हैं कि नहीं यही करना है तूने, यही पढ़ना है।
घूमना फिरना हुआ होगा, गिफ्ट के तबादले हुए होंगे, फोन पे बातें हुए होंगी, ये सब ये भी होता होगा, लेकिन कहीं ये नहीं भी होता होगा, लड़का लड़की ने पसंद किया है ना, बड़े जो है वो इसी बात पड़े हुए, नहीं यहाँ पे तुम, मैं तो रिश्तेदार में ही कराऊंगा, या मैं अपने दोस्त से करवाऊंगी, या मेरे भाई की बेटी से होगी तो मेरे भाई के बेटे से होगी, वहां पर उन्होंने दोनों ने पसंद किया, अब आप ही उनको स्पेस दे रहे हैं कि तुम लोग बातें करते रहो, तुम लोग तोहफे तोहफे देते रहो, एंड पे है ना फिर अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट में रिच कर लो, लेकिन वो अरे पसंद किया है तो भाई फौरन उनकी पसंदगी को वो कबूल करते हुए फौरन शादी करें।
भैया दो बातें बयान की हैं, अगर पसंद किया है, पेज लड़ गया है और कोई शरी खराबी नहीं है तो वालिदैन से यही दरखास्त है कि अब दिल भरा करके निभा लो।
वालिद की रिपोर्टेशन सही ना हो तो क्या करें?
वही बात है
ना कि वो फिर अपने बच्चे को समझाएगा कि बेटा प्रॉब्लम ये है,
नहीं माना तो
अब वो कोशिश ही कर सकता है, क्या
फिर सरेंडर हो जाए?
सरेंडर ना होना नहीं होता, मगर फिर कोशिश जारी रखे, मैं तो यही कहूंगा कोशिश जारी रखे, और उसमें बच्चे को भी बाकी भी ना होने दे। अजी आसिफ अगर बंदा संभालना चाहे ना, बाप अगर औलाद को संभालना चाहे किसी भी तौर पर, और उसका जहन है कि मैंने हिकमत और मसलियत के साथ अपने बेटे को सेट करना है, बाप तो होता ही बाप है ना यार, बेटा मैं आखिर हूं तो तेरा बाप ना, यही बोलेगा ना यार।
नहीं ऐसा,
औरत भी तो औरत ही होती है, फिर वो क्या करे,
क्या क्या करे,
मजबूर है औरत के आगे, उसकी एक मोहब्बत है, वो चाहता है यही करनी है,
बिल्कुल ये है, ये मर्द
यही करनी है,
मर्द की कमजोरी है कि वो औरत और शहवात पर बर्दाश्त करना दुश्वार है, इंसान कमजोर बनाया गया है, और इस कमजोर की शरा तफसीर में लिखा है कि वो औरत और शहवात पर सब्र नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये उसकी ये कुरान उसकी तफसीर बयान कर रहा हूं मैं आपको, ये जो चीज है ना, इस पर बाप को भी समझना है कि ये इस वक्त जिस मैटर में इन्वॉल्व हो चुका है, वहां मेरी जिद या मेरी जबरदस्ती या मेरा इस तरह का प्रेशर में डालना, ये उसको नहीं निकालेगा, उसको टाइम टाइम गेन करना पड़ेगा, और हिकमत अमली और मसले के साथ। आप भी अच्छा। एक केस मेरे पास लेकर आए थे, एक केस आप लेकर आए थे और आपने मुझसे डिस्कस की थी, मैंने कहा था टाइम गेन करें, टाइम गेन करें, वो बेटी का मसला था किसी की, टाइम गेन करें, टाइम के साथ इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो बाज जगह पर जो ना ये वालिद जो था ना, वालिद वालिद बड़ा ही हिकमत वाला मसलियत वाला, देखो जो नहीं इख्तियार करते हम उन्हीं से तो बात कर रहे हैं, जो करें उनसे थोड़ी बात कर रहे हैं कि बाप बाप अगर घर नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, बाप का काम होता है, बेटे बादों का गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बाप ने ही इन सबको लेकर चलना होता है, बेटियां गलतियां करती हैं, बेटे गलतियां करते हैं, इन जनरेशन में करते हैं, बल्कि मैंने कई दफ़ा ये कहा है आपकी जनरेशन, आपका जनरेशन के बारे में भी कुछ मैंने कहा है, शायद हमारे हमारी आपस में बात होती थी कि मेरी उम्र अगर 57 साल की है तो अगर मेरा बच्चा कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है तो मैं ये नहीं देखूँगा आज मैं ऐसा हूं तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, मैं देखता जब मैं 22 साल का था तो मैं क्या करता था, मैं 25 साल का था तो मैं क्या करता था, मैं वो टाइम याद करता हूँ, ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा वली है, एक कंपैरिजन के तो भाई एक उम्र होती है ना, उस उम्र में अच्छा ये हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने इरशादात में कहीं बयान किया, मैंने पढ़ा है कि अगर किसी से गलती हुई है तो वह उसको पहले अपनी जगह पर उसको रख के देखे कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, उसकी गलती को रियलाइज करना, उसकी गलती को समराइज करना, उसकी गलती को समझना आसान हो जाता है, ये वालिदैन को करना चाहिए।
अच्छा, आप स्पेस देने का जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मसला अगर आ गया है वालिद के पास तो वो उसको थोड़ा सा चलाए और समझाने की कोशिश करे। तो ये इस पूरे पीरियड के अंदर वो जो लड़का लड़की बिना निकाह के अगर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर उसका गुनाह बाप को भी मिलेगा?
शरीयत इजाजत नहीं देना। देखो वो तो मुकल्लफ है ना लड़का।
वो तो कह रहा है मेरा निकाह करा दो ना अब्बू से, लेकिन वो अब्बू कह रहे हैं कि नहीं, अब उसका अब्बा सही नहीं है तो फलाना नहीं है, तो वो टलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कि इसके सर पे मोहब्बत का भूत उतर ही जाए, लेकिन वो तो उतरने के लिए तैयार ही नहीं है।
उतर जाए
आपके जब आंखें खुलेगी, जब वो कोई है ना लड़का या लड़की है ना वो पिल्स ले लेगी कोई, वो नींद की एंड जो है ना खुदकुशी कर लेगी जब, और पहले मान लेते तो अच्छा था, फिर आपस में
मेरा तो माफ करें, हाँ, अगर आपस में कोई ऐसा हो गया।
लेकिन यही समझाया जा रहा है कि अगर वालिदैन को ऐसा लगता है कि कोई शरई या बाज़ औक़ात माशरती और शरई बहुत बड़ी खराबी होती है जिसमें हम वालिदैन को प्रेशराइज नहीं कर सकते,
लेकिन आई साहब 24 घंटे किसी भी बच्चे की चौकीदारी कौन कर सकता है? कोई भी माँ बाप नहीं कर सकते।
समझाया जा सकता
है, समझाया जा सकता है, और वो भी अगर एहतरामन उसने समझ लिया।
शरीयत का एक उसूल है ताकतवर, कि आपने अपनी ताकत भर कोशिश की बचाने की संभालने की, खत्म। वैसे अल्लाह ना करे बीवी बेपरदा घूम रही है, तो शोहर का काम है ताकत भर, यानी जितनी अल्लाह ने उसको ताकत दी है समझाने को उतना समझाएगा, अगर वो नहीं समझती तो उसको मारेगा पिटेगा थोड़ी। इसी तरह दीगर चीज़ों में देखे कि भाई बंदा किसी को गुनाह करते देखता है तो वो इसको ताकत भर ही समझा सकेगा ना, कि भाई जितनी मैं समझाने की सकत थी ताकतें मैंने समझाया। अब अगर वो नहीं समझा या कोई नहीं समझ पा रहा तो कम अज़ कम वहाँ ये खुद को इंद अल्लाह बरयुज़िमा करने पर कोशिश कर रहा है कि मैं अल्लाह के नज़दीक बरयुज़िमा हो जाऊं, कि या रब्बे करीम मैंने जो मुझे तूने जो ताकत और जो मुझे तूने दिया मैंने अपने हिसाब से मैं कोशिश कर ली, मगर मौला मैं कामयाब नहीं हो सका, मामला फिर रब के सपोर्ट कर देगा और क्या करेगा।
क्या क्राइटेरिया है आपका कि अगर मिसाल बीवी पर्दा नहीं कर रही है या अगर कोई बच्चा किसी नेगेटिव एक्टिविटी में है तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है कि वो किस तरह से समझा, वो उसको ज़हनी टॉर्चर करे जा रहा है, जिस हद तक ज़हनी टॉर्चर कर रहा है
बिलाल भाई, जिस हद तक शरीयत ने औरत की बेशर्मी बेहयाई को कंट्रोल करने के लिए जिस हद तक सख्ती करने की इजाजत दी है वो उस हद तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, यही ताकतवर है।
बेपर्दगी कर रही है जो तो है ना, उसको आपने बोला मारेगा तो नहीं मारेगा, क्यों नहीं, शोहर है मार सकता है, वरना क्या दयूस बन के घूमता रहे।
दयूस तब होगा कि जब वो उसकी उस बेशर्मी बेहयाई पर खुश है, राजी है और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता समय को, तब वो दयूस होगा, अदरवाइज दयूस नहीं होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक शरीयत ने शोहर को भी एक सख्ती के लिमिट दी है कि भाई इस हद तक तुम समझाओ, माँ को समझाओ, बहन को समझाओ, बेटे को समझाओ, बेटी को समझाओ। अच्छा बीवी शोहर को समझाएगी, अल्लाह की ना फरमानी पर राजी रहना नहीं होता, अल्लाह की ना फरमानी पर दिल में बुरा जानना होता है और अपनी ताकत पर उसको रोकने की कोशिश करनी होती है। अब अगर वो नहीं रुक पाता या नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती तो ठीक है, मामला अपने रब के सपुर्द करे, खबर सबकी अलग अलग है, क़यामत के दिन के हिसाब किताब के मामले में वो समझ लेगा कि यार मतलब कि मैंने तो अपने ताकत पर कोशिश की, लेकिन अब ना समझे तो क्या कर सकते हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा
हूँ, आसिफ भाई ने एक बात बोली थी ना, जैन जी, जैन अल्फा, अब जैन बीटा, उसकी बात की थी। जैन जी ने तो वो फेस कर लिया कर लिया, अगर एक मौलवी है तो उसने अपने बच्चे को मौलवी बनाना है, वो जैन जी के साथ हो चुका, मौलवी साहब ने 15,000-20,000 अपना गुजारा करा, मस्जिद के कमरे में रहे, बच्चे को भी वहीं रखा और उसके बाद उन्होंने उसी रविश पे बच्चे को चला लिया, वो जैन जी तो भुगत चुकी। जैन अल्फा के साथ ऐसा ना किया जाए। अब मौलवी तबका भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं मौलवी हूँ तो मेरा बच्चा भी मौलवी रहे, तो भाई आप अब 30,000-40,000 रुपये में गुजारा मुमकिन नहीं है उसके लिए, उसको कुछ और करना है।
अब डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, पीएचडी चाहता है मेरा बेटा पीएचडी करे, तो अगर एक आलिम चाहता है कि मेरा बेटा आलिम बने तो प्रॉब्लम क्या है?
पैसे है ना, पैसे, पैसे।
प्रॉब्लम कहाँ है?
पैसे।
प्रोफेशन में तो नहीं है?
पैसे में।
प्रोफेशन में नहीं है ना?
यूं।
तो आप जो इस वक्त जो जेन जी के नुमाइंदे बने हुए हैं तो अब इस प्रॉब्लम को हल कराए ना मजहबी लोगों की।
ये तो मजहबी लोग खुद प्रॉब्लम अपनी हल करेंगे ना, वो अपने बच्चे को स्किल सिखाने की तरफ क्यों नहीं माइल कर रहे या उसे सीखना चाह रहे हैं?
सबको उसी स्किल की तरफ ले जाएंगे तो हमारे भाई मस्जिद कौन संभालेगा, आपको शरीयत के मसले कौन बताएगा, आपको तरावी में अभी आज इस वक्त आप रमज़ान में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको तरावी सुनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए कि हाफिज़ चाहिए?
डॉक्टर हाफिज़ भी हो सकता है, इंजीनियर हाफिज़ भी हो सकता है।
हो सकता है, कितने उनका इदारा अलग बनेगा, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर हैं जो हाफिज़ हैं, कितने कितने पीएचडी स्कॉलर हैं जो हाफिज़ हैं? नहीं है, इतने नहीं है, ना होने के बराबर। क्या इन सबसे आप मस्जिदें भर लोगे? आप ये जो प्रॉब्लम है कि भाई इनकी तनख्वाह कम, अब थोड़ा सा आप मुझे जस्ट ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि 25-30-40 हज़ार रुपये जो भी एक मौलाना को मिल रहे हैं, ठीक है जो भी मिल रहा है, अगर वो 12 घंटे की अपनी कोई भी सर्विस बनाता है एक मजहबी आदमी, तो भी 80,000-90,000 रुपए या लाख रुपए या बना लेता है। ये आज की 2026 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमामत से 25-30-40,000 रुपए बन जाएंगे, कहीं ददरी से 25-30-40,000 बन जाएंगे, अगर क्योंकि आम आदमी भी 10-12 घंटे की तो कोई ना कोई सर्विस कर ही रहा होता है ना। इमाम की तो सर्विस 2.5 घंटे की है तकरीबन, नमाज पढ़ाने की, ठीक है। 2.5 घंटे के 40,000 रुपए किसको मिलते हैं? इमाम को मिलते हैं। 30,000 रुपए 40,000 किसको मिलते हैं? इमाम को मिलते हैं। अगर वो अपनी दीगर जो इल्मी जो इसकी जो अगर काबिलियत सलाहियत है तो 40-50,000 रुपए से ज्यादा 80-90,000 रुपए ये आज के दौर में 2026 में भी वो बना लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिस तरह के आप कहा कि मौलाना या मौलवी जो भी है कहा, ये कितने ग्रेजुएट हैं जो 40-50,000 रुपए लाख रुपए कमा रहे हैं? बेरोजगारी ज्यादा है। आप मुझे शायद कोई एक मजहबी आलिम, कोई एक अच्छा आलिम, नॉर्मल आलिम जो चलो बहुत ही ज्यादा हाई फाई नहीं है, शायद एक साबित नहीं कर सकोगे जो बेरोजगार हो।
आप मौलवी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है,
जी जी
है ना, के ना आप रेशो बता दे,
रगे मौलवियत भरी है,
रेशो बता दे कि कितने मौलवियों ने बाअमल आलिम दीन जो है उन्होंने कितने रेशो है जिसने खुदकुशी की।
डॉक्टर खुदकुशी नहीं करेगा, इंजीनियर खुदकुशी नहीं करेगा, जिसके पास स्किल होंगे वो खुदकुशी नहीं करेगा।
जिसने दुनिया को खुश रहने के लिए स्पीचेस किए ना उनकी सुसाइड साबित है, जिन्होंने जीने के तरीके बताए ना उनकी खुदकुशियां साबित है।
ये पता है इनका थोड़ा सा मैं समझ सका हूँ, ये कंफर्म करेंगे कि राइट है या रॉन्ग, के ना आप लोग जो है ना ज्यादातर मौलवी हजरात वो है ना सिर्फ दीन की तालीम की तरफ रागिब कर रहे होते हैं कि आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, कारी बन जाओ। बहुत कम सुनने में आता है कि आप इनके साथ ये प्लस करें कि आप हाफिज तो बनो लेकिन आप है ना इंजीनियर भी बनो, आप कारी तो बनो उसके साथ डॉक्टर भी बनो, आप आलिम तो बनो उसके साथ साइंटिस्ट भी बनो, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। तो ये दोनों करें
मुझे ना? बहुत कम सुनने को मिलता है कि आप डॉक्टर तो बनो मगर आलिम भी बनो, आप इंजीनियर तो बनो मगर आलिम भी बनो, पीएचडी तो करो मगर आलिम भी बनो, आप पायलट तो बनो मगर आलिम भी बनो, ये तो मुझे सुनने को नहीं मिलता।
तो आप क्या बदला ले रहे?
बदला नहीं रहे, मेरे पास लाहौर के अंदर फैजान मदीना काना 9 में कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, भरा हुआ था फैजान मदीना, भरा हुआ था, हजारों स्टूडेंट जमा थे। मैंने स्टूडेंट को यही कहा, आप कहते हैं कि दुनियावी तालीमी याफ्ता इमाम मेंबर हो मेरा पर हो, मैं उसको कब मैं ग्रेजुएट कराऊंगा और मैं उसको पीएचडी करवाऊंगा? आपने क्या हुआ है ना, आ जाओ 6 महीने में आपको इमामत कोर्स करा के मैं आपको इमामत का हल बना देता हूँ, मेंबर हो मेरा आप संभालो, चलो आ जाओ।
एजुकेटेड पर्सन जो आप,
आपको एजुकेटेड इस तरह का एजुकेटेड पर्सन मेंबर हो मेरा पर चाहिए ना, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉलेज को, 6-7 महीने के अंदर मैं इमामत कोर्स करवा देता हूँ, खत्म हो गई बात, बेरोजगार नहीं रहेगा, मेरी गारंटी इसको फाइल लेकर नहीं घूमनी पड़ेगी किसी जगह पर, फाइल रखेगा
तो वही 40-50,000 रुपए। अब जब वो मुल्क छोड़ के जाता है तो आपको प्रॉब्लम, वो माँ बाप से दूर हो गए, वो रिश्तों से दूर हो गए, तो भाई वो क्या करे, उस बंदे को तो आपने फंसा दिया।
उमर भाई एक तो यार देखें जवाब इनको देने, अब हर सवाल का है ना जो भी सवाल कर रहे मेरे
मुंह से लगता है आप इनकी तर्जुमानी भी कर दें।
बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा,
अब तक कितने सवाल किए मेरे मुंह पे कर रहे हो जवाब हाजी साहब दे रहे हो, उधर देखो ना यार मैंने क्या कसूर किया।
इतने मौलवी मैंने भी ऐसे देखे हैं कि जो लाख रुपए से ज्यादा ही कमा रहे हैं और बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं।
अरे 1% 2% होंगे भाई इस माशरे में जी रहे हैं आप, 1% 2% मौलवी होंगे भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं, और बाकी जो 98% का रेशो निकाल के देखें ना तो आपको इसी तरह मिल रहा है जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल,
जो पढ़े लिखे तबका है ना जो यहाँ से मुल्क छोड़ के जाता है, तो फिर इन्हीं मौलवी हजरात को प्रॉब्लम होती है कि वालिदैन से दूर हो गए, और भाई वो तो अपना फ्यूचर बनाने गया है, कमाने गया है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे उसको?
आप मौलवी हो क्या हुआ, जवाब नहीं है?
देखिए मेरे मौलवी होने या ना होने का कोई फर्क नहीं है।
यस और नो प्लीज,
कह सकते
हैं ना, तो आप मतलब अच्छा नहीं कमा रहे?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अच्छा। मौलवी होते हुए आपकी प्रोफेशन क्या है?
असल में इनकी मौलवी से मुराद दाढ़ी नहीं है।
अच्छा,
सारा प्रॉब्लम ये है कि ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं ये इतनी ज्यादा पसंदीदा नहीं है, क्योंकि उलमा नहीं होंगे, हाफिज नहीं होंगे, तो हमारा जो इस्लामी निज़ाम है वो पूरे के पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको शायद हमारी जनरेशन समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह माशरे में डॉक्टर ज़रूरी है ना, डॉक्टर बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी आपको उलमा और इमाम मिलेंगे। हर इलाके के अंदर अगर क्लिनिक है तो हर इलाके के अंदर मस्जिद भी है। आपका बच्चा पैदा होता है तो आप किसी भी उस हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं कहते कि यहाँ सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन है, फलां है, उसको बुलाना मेरे बच्चे के कान में अजान देनी है। आप दाढ़ी वाले को तभी भी याद करते हैं। आपके वालिद साहब का इंतकाल हॉस्पिटल में हो गया, अब ये नहीं कहते यार यहाँ जो सबसे बड़ा सर्जन था वो कौन है भाई फला है, या मेरे वाले से जनाजा पड़ा ना उसको ले आए। तलाक का मसला होता है तब भी आपको चाहिए, यानी जिंदगी के इन तमाम तर नशेब व फराज में खुशी से लेकर गम तक यही यही फर्क चाहिए जिसको आप मौलाना या मौलवी का नाम दे रहे होते हैं। प्रॉब्लम जो इनको है ना वो है कि इनकी सैलरी कम है, इनकी आमदनी कम है। इनको शायद मेरे को नहीं लगता कि इनको इस प्रोफेशन इस फील्ड से इनको प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए एक मुसलमान को। प्रॉब्लम ये है कि इनकी आमदनी कम है, तो आमदनी को सही करने की जिम्मेदारी सोसाइटी की है ना भाई, कि जब सोसाइटी को ये बात पता है कि ये तबका या ये वो प्रोफेशन है जो हमारे माशरे के लिए ऐसा है कि इसके बगैर हम जी नहीं सकेंगे। आपके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएगा, आपको नमाज़ें कौन पढ़ाएगा, आपको तरावी कौन पढ़ाएगा, आपको हराम हलाल के मसाइल कौन बताएगा, ये सारा करने के लिए इनको पढ़ना पड़ता है। जिस तरह के ये पढ़ते हैं, आप सबसे पहले दारुल उलूम के मसाइल तो हल करें, आप पहले इनके इंस्टीट्यूशन के मसाइल तो हल करें, उसके बाद फिर इनकी तनख्वाह। ये तो सोसाइटी का काम है ना, माशरे का काम है कि इन तमाम तो चीज़ों को हल करें। हमने अहदेदार और जो आप कहें कि अथॉरिटीज़ होती हैं मुल्क की, मैंने उनसे डायरेक्ट जाकर बात की है कि जिस तरह आप एक बनाते हैं कि भाई कम अज़ कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, तो जो मजहबी लोग हैं इमाम हैं इनको भी इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते हैं कि भाई कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए, क्यों नहीं आप करते। मगर जिस तरह मसला यह है अमर भाई कि जिस तरह दुनियावी तालीम में बासलाहियत तो काबिल नहीं होता उसकी आमदनी भी नहीं होती, और जो काबिल और बासलाहियत होता उसकी आमदनी होती है। दीनी मामले में भी जो बासलाहियत है जिसने सही पढ़ा है और काबिल है उसको आमदनी का टेंशन नहीं होगा, ये मैं आपको बिल्कुल बता मेरी फील्ड है।
आपने ना दीन को सिर्फ दाढ़ी से मंसूब कर दिया ना, कि आपने एक जगह फरमाया कि यार किसी को है ना आपके बच्चे को अजान देनी हो कि दाढ़ी वाला चाहिए, कोई ना इमाम नमाज पढ़ानी है तो दाढ़ी वाला चाहिए, नमाज जनाजा पढ़ानी तो दाढ़ी वाला चाहिए। मतलब आप बगैर दाढ़ी वाला अगर इल्म रखता है तो उसको क्या अजान देने की इजाजत नहीं देंगे?
अजान देने की उसको इजाजत,
इमामत की इजाजत नहीं दे?
आप ही नहीं ढूंढोगे, नहीं इमामत की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन अजान अगर को दे दे तो इसको बच्चे कान में अजान तो देना नाजायज नहीं होगा उसका, लेकिन हमारा माशरा ही इसको कबूल नहीं करेगा।
इसी वजह से तो स्पेस बढ़ता जा रहा है सब, आप
ना स्पेस नहीं बढ़ रहा ये हमारी खूबसूरती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन और मजहब को इतना समझा जा रहा है कि ये हो दीन और मजहब की अलामत। हर एक को अब डॉक्टर भी तो बना कर नहीं ले आते, हर कोट पहने वाला आदमी डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा, हर काला कोट पहने वाला वकील थोड़ी हो जाएगा। आप भी तो देखभाल कर लेकर आते है ना इस तरह की चीजों को।
मैं क्लीन शेव हूँ ठीक है, और है ना मैंने दरस निजामी किया ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ना वो इमामत कोर्स वो भी किया, मैंने आलिम कोर्स भी किया, मैंने तखसुस फिल फिक भी किया, एक कोई टर्म होती है। अब मैं हूँ क्लीन शेव या पूरी दाढ़ी वाला नहीं हूँ, आप मुझे स्पेस क्यों नहीं दे रहे कि यार शहजाद जा तू है ना ये सब कुछ जानता है तू इमामत कर ले,
इमामत
क्या अजान दे दे,
दाढ़ी
निकाह पढ़ा दे।
दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम है, तो इसकी वजह से वो फांसी के मौलिन होगा, इसको इमामत की इजाजत नहीं दी जाएगी।
शरबत आ जाता, कुछ खीर खुरमा आ जाता, तो अभी ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है।
अच्छा यार ये आईएनजी जो शुगर, आपकी जो शुगर लेवल है ना वो पहले लो थी, मैंने खजूर से एक घंटे का सपोर्ट दिया उसको, फिर लो हो गई।
तो वो जो वो बर्तन में कुछ और भी लवाजम आते हो मेहमानों को पेश नहीं करने, अंकल मैं ले लूं क्या?
हां ले ले आप ले
बेटा, जो दिल के रखो।
ईद का समय है, कुछ खाते पीते चलता रहे तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होती रहेगी। अच्छा वो बिल्कुल अलग के सजा
आज अम्मी की बुजुर्ग के देखे प्लेट उसके हाथ में रखे खजूर का खाली।
अब मिसाल के तौर पे किसी के यहाँ पर मेहमान तो आ गए, ईद का दिन है या कोई और इवेंट है, अब मेहमान आने के बाद मेहमान अपना यही जहन बना ले कि मैं यहाँ आया हूँ तो चाय पी के खाना खा के ही जाऊँगा, भले सामने वाले की हैसियत है या नहीं है, या सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसकी अपनी घरवाली बीमार है, उसकी अपनी बीवी बीमार है, या कुछ भी इस तरह का इश्यूज़। अच्छा फिर ना वो रिवायतें सुनाने लग जाते हैं कि मेहमान तो रहमत है, तो मेहमान आता है तो रहमत लाता है, मेहमान अपना नसीब खुद लाता है, तो भाई आते हुए 1 किलो मुर्गी बनवा के ले आते, वो पका के दे देता आपको। इस तरह की बात करना और वो जो मेज़बान के ऊपर लोड डालना, इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे?
देखिए चाय और पानी इस तरह मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेज़बान पर लोड पड़ता है।
को पता ही है चच्ची बीमार है मेरी, या कोई फुप्पो बीमार है, या खाला है मेरी, अम्मी बीमार है, या मेरी वाइफ बीमार है, या पता है कि वो
अगर वो इयादत के लिए आया है ना, अगर वो इयादत के लिए आया है बतौर मेहमान भी, अगर इयादत के लिए आया है तो इस तरह की कभी भी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि यार ये करो वो करो वो करो।
क्यों नहीं करेगा ऐसा? वो जाने के बाद उतर में गया था, मुझे कुछ पूछा ही नहीं।
पानी वानी तो पूछ ही लेंगे ना, पानी में तो कोई मसला नहीं।
ऑनलाइन का दौर है, डिलीवरी मंगवा ले और क्या है,
कुछ ना कुछ कर करा के मेहमान को वैसे खुश करना चाहिए।
मतलब ये इसके ऊपर अड़ जाना या उसके ऊपर बाद में लड़ाई करना या जब वो खुद फिर मेहमान बनकर आएगा ना,
ऐसा कोई अड़ता है तो हम उसको ये समझाएंगे कि आपको उसको नहीं करना चाहिए था, दिल बड़ा रखना चाहिए था। लेकिन जब भी कोई मेहमान आए तो मेजबान को चाहिए कि उसकी अपनी जो भी हस्ब सतात है उसकी खातिर वगैरह करे कि ये इस्लाम और दीन को पसंद है।
अगर कोई मेहमान नवाजी करता है घर में और 10-15 हज़ार रुपये खर्च करता है तो यहाँ उसका यही होता है कि यार यहाँ आएंगे घर में वही रश होगा, तो ये 10-15 हज़ार अगर मैं अपनी फैमिली पर बाहर ले जाकर खर्च करूँ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अट्रैक्शन बढ़ गया है। खानदान पर खर्च करने के बजाय वो ये पसंद कर रहा है आजकल कि यार मैं ज़रा बाहर होटलिंग कर लूँ, घर वालों को बच्चों को आउटिंग पे ले जाऊं, ये 15-20 हज़ार रुपये का जो मेरा बजट है जो घर में रहकर सबको बुलाकर खर्च करूं, मैं अपनी फैमिली के साथ खुद ही एंजॉय करूं। ये जो आप शायद मसूद भाई जो बता रहे थे वो इस तरह का ही माहौल बना रहा
है, भी इसी में आता है, आउटिंग हो जाती है, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है और वैरायटी ऑफ डिशेज मिल जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। अब रोजाना घर का एक जैसा खाना खा करके वो कोरमा भी वही बनेगा ना,
ये कि अच्छा है। मैं अगर एक चीज ऐड करना आपकी इजाजत हो,
थैंक यू बोले आपकी बात की तायद कर दी
साहब,
थैंक यू।
पहले बुजुर्ग बोले जो मैं नई जनरेशन के लोगों को बात मान ली। अच्छा आई साहब, इसमें थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि आजकल ना बड़ा एक ट्रेंड सा बना हुआ है ना कि शादी करी तो बच्चे को अलग कर दिया, शादी भी मर्जी से करी या चलो बच्चे ने करी, इसमें ये नहीं है कि माँ बाप की मर्जी है या बच्चे की मर्जी है। अब शादी कर दी, अब वो उसे अलग भी कर दिया, अब वो मर्द के ऊपर ना कम उम्री में ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, जैसे 22, 23, 24 अभी एजुकेशन पूरी हुई, शादी हो गई, अब क्या उसे घर भी देखना है, उसे फैमिली भी देखनी है, और एक साल बाद बच्चा हो गया उसे भी देखना है। तो मतलब बड़ी तेज़ी से जो है ना ये हमारे माशरे में आ रहा है कि इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं और शादी के फौरन बाद अलग, और इस तरह क्या होता है मर्द जो है ना वो एक कमाने की मशीन बन गया है।
शुरू से ही मर्दों का काम ही ये रहा है कि वो कमाएगा और औरत घर चलाएगी,
उसकी अपनी जिंदगी नहीं है साहब,
इसकी ये जिंदगी उसी की तो है।
मतलब ये
मतलब गैर शादीशुदा रहकर भी क्या जिंदगी गुजारेगा, ये जो जिम्मेदारी वाली जिंदगी है वो तो फिर वो क्या आप लोग क्या जब कहते हैं वो छर्रों वाली जिंदगी है।
मतलब आज ऑफिस जाने का दिल नहीं है तो भाई नहीं नहीं जा सकता, वो नहीं जाएगा वो, क्योंकि नहीं तो पैसे कट जाएंगे।
नहीं तो वो अगर नहीं शादी करेगा तो भी क्या घर में बैठा रहेगा,
माँ बाप वालदेन ने करा दी ना कि भाई उम्र हो गई शादी कर लो,
अच्छा है ना करवा दी, अल्लाह ना करे अगर शादी नहीं करेगा तो गुनाहों में पड़ेगा, अच्छा है ना वालदेन ने शादी करा दी, खुश नसीब है जिनके वालदेन ऊपर रहेगा उनकी शादी करवा दी और थोड़ा बहुत मिलजुल कर कोई खर्चा पानी उठा लिया। निकाह करने से आधा दिन महफूज हो जाता है, आधे के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि बंदा गुनाहों से बच जाता है, बेरा रवि से बच जाता है। देखिए निकाह के बाद जनरली तौर पर आदमी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आप निकाह की बात कर रहे हैं, हम मेहमान लोग हैं हमारे इसमें वो बल्कि और कम्युनिटी में भी एक वक्त आता है कि वालिद बेटे को खर्चा देना बंद कर देता है, पता क्या कि खर्चा नहीं दूंगा तभी खड़ा होगा, खर्चा दूंगा तो खड़ा नहीं होगा। अब बोले यार बाप में बाप खर्चा देना, ये इसकी भलाई के लिए कर रहा है, शादी भलाई के लिए की जाती है कि इसका घर, और हमारे बड़ों ने तो ये हमको सिखाया है कि शादी इसी उम्र में कर लो कि तुम्हारे बूढ़े होने से पहले बोले तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, ये ज्यादा बेहतर होता है।
ये जो मुफलिसी का और ये रोना रो रहे होते हैं तो कहते हैं कि यार ना मैं शादी कर लूंगा तो मैं अफोर्ड कैसे करूंगा, अभी तो मैं अपने पैरों पे सही तरह से खड़ा नहीं हुआ तो मेरे साथ ये हो जाएगा, खर्चे बहुत है। फिर
निकाह करने से रिस्क में बरकत आती है, तंगदस्ती दूर होती है, मुफलिसी दूर होती है निकाह करने से
जी,
आने वाले अपना रिस्क लेकर आती है। मैं एक जनरल एग्जाम्पल जनरल बात कर,
बच्चे का भी
जितने भी आप कैमरा मैन सब है, सब ने अपनी जिंदगी का किस्सा गुजारा है। शादी से पहले आप एक कमरे में रहते थे, बल्कि इससे पहले आप एक बिस्तर पर सोते थे, एक कमरे में भी दो बिस्तर होते थे जिस पर आप सोते थे। फिर एक वक्त आया थोड़ा बहुत आप की जब थोड़ी पोजीशन हुई तो आपको एक कमरा और एक बेड मिला। शादी से पहले आप एक ही कमरा और एक बेड के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते थे, जब शादी होती है तो आपके पास एक बाकायदा एक फ्लैट आ जाता है या एक बड़ा कमरा आ जाता है और कुछ आ जाता है, ये बढ़ा, आप वही अकेले हो, आने वाला अपना सामान लेगा। लेकिन ऐसा ऐसा जब बच्चा आ जाता है, फिर एक बच्चा आ जाता है, तो आप देखिएगा कि इस पर 60-70 साल पहले जो जिंदगी थी आज वो जिंदगी उस घर के अंदर या उसके छोटे से क्वार्टर के अंदर नहीं है, बढ़ते 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 एक फ्लैट या एक मकान की हद तक आ गई है।
जरूरी थोड़ी आई साहब
तकरीबन के साथ
है, वो रेंट पे आ गया, अपना घर भी बिक गया, 20-25 लाख लगा दिए
रेंट भी, तो कहीं से पैसा आ रहा तो रेंट भर रहा है ना, तो रेंट में कर्जा तो नहीं चढ़ रहा। मगर आप ये देखिएगा आने वाला बीवी आई अपना रिस्क लाई, आप में कुशादगी आ गई, औलाद आई अपना रिस्क लाई, आप में कुशादगी आ गई, जैसे बच्चे आते गए आपके तो कुशादगी आती गई है, और आप बढ़ते रहे, आपकी आमदनियां बढ़ती रही हैं।
सर ये तो दीन के आप एक बात बता रहे हैं, इससे मैं
नहीं, नहीं, ये तो नहीं कर रहा, तो दुनिया के
अंदर लेकिन बाजों का ये अगर बजाहिर अगर उसमें देखा जाए तो उसका अपोजिट भी हो जाता है।
क्या बिल्कुल रिवर्स करो
कि वो, हाँ वो शादी कर ली थी, वो उससे पहले अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, मोबाइल भी चेंज हो रहा था, बाहर आउटिंग भी हो रही थी, शादी के बाद तो वो बंदे की वो
जिंदगी, तो वहाँ ये देखा जाएगा
वो कहीं का नहीं रहा, वो तो
नहीं, वहाँ ये देखा जाएगा वो कहीं का नहीं रहा, तो वो घर का रहा या घर का नहीं रहा। असल में कहीं का नहीं रहा में ना उसके अपने भी कर्तव्य शामिल होते हैं। अगर वो टाइम पर घर से निकल रहा है, टाइम पर काम कर रहा है, टाइम पर रोजगार कमा रहा है, टाइम पर ये सब कर रहा है, अल्लाह ने चाहे तो कभी दुख का मुंह नहीं देखेगा इस तरह का।
वो बच्चे कहते हैं ठीक है औलाद आती है, अब लेकिन वो औलाद अपना नसीब भी खुद लाती है, अल्लाह देता है तो सब कुछ होता है। अब वो उसने औलाद की लाइन लगा दी कि वो मतलब दो बच्चों के भी स्कूल के पैसे नहीं थे, वो चार पाँच कर दिए, महंगाई बढ़ गई तो उन बच्चों की वो एजुकेशन भी रुक गई।
नहीं तो औलाद जो भी आएगी अपना रिश्ता लेकर आती है,
तो फिर वो बजाहिर तंगी क्यों हो जाती है?
वो उसके, उसको, उसको, उसको अपना मामला
गुजर बसर हो रहा था,
उसका अपना मामला देखना होगा कि वो ऐसे क्या क्या अमल कर रहा है जिसकी वजह से उसके रिस्क में तंगी आ रही है। रिश्ते काटेगा रिस्क में तंगी आएगी, जमात से नमाज नहीं पढ़ेगा रिस्क में तंगी आएगी, झूठ बोलेगा रिस्क में तंगी आएगी, सिले रहमी नहीं करेगा रिस्क में तंगी आएगी, गालम गलोच करेगा और कई और गुनाह के काम करेगा, यानी गुनाह रिस्क को तंग कर देता है। जब वो खुद ही इस तरह के काम कर रहा है,
गुनाह तो शादी से पहले भी कर रहा था, उस वक्त तो सेट था बंदा।
नहीं सेट नहीं था, वो अपसेट ही था क्योंकि और कई गुनाह में पड़ा हुआ था, निकाह से तो वो गुनाह से बचने की सूरत उसकी पैदा हो गई थी। निकाह करके लोग खुशहाल हुए, मुझे नहीं लगता निकाह करके, निकाह करके लोग जब बदहाल होते हैं ना वो अखलाकियात की वजह से होते हैं, घरेलू हालात की वजह से होते हैं। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी ने उठाई है पूरी और कर रहा है काम, अल्हम्दुलिल्लाह औरत भी साथ देना शुरू कर दे।
बच्चे ये भी है कि बीवी की बेजा फरमाइशें और बहुत सारी चीजें, अब आसाइशें मिलना और फिर
अपनी चादर में रहकर अम्बार में जियोगे ना, आपको दुख अल्लाह ने चाह तो नहीं देखा।
भाई साहब मोबाइल में तो पता नहीं वो कौन कौन सी चादरें देख रहे हैं, वो फला ने ये ले आया फला ढिमका ले आया, तो आप तो मुझे कहीं ले जा नहीं रहे। आजकल ये भी तो मसाइल है ना, जरा आप समझ नहीं रहे इतनी।
हमें नहीं समझ रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, हमने दुनिया देखी कोई नहीं है।
हाँ ना आप पुराने जमाने के,
अब देखी नहीं
नए जमाने
के, हम तो पुराने जमाने के, हम तो जमाने का सिक्का भी याद नहीं चल रहा
है,
हम दो जमाने के लोग, वो नोटे खत्म हो गए ना जो हमारे जमाने में चलती थी।
अब आपको तो 2500 रुपए मिल जाए सब, हमें तो 5000-5000 रुपए,
हम 2500 रुपए कितने खुश थे। वो दिन आ जाए आपके पास, वो दिल आ जाए तो कितने मजे लग जाएंगे।
अभी तो वो बहन को पकड़ के मांगती है कि 5000 से कम मैं लूंगी नहीं।
ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले,
सब ये
बहुत निकले मेरे अरमान।
बार बार बात करनी है कि शादी के बाद अलग हो गए, शादी के बाद अलग हो गए, तो पुराने दौर में शादी के बाद अलग होते थे, लेकिन ये जो कनेक्शन जो हमारा है ना,
माँ बाप की दुआओं ने इन्हें खुशहाल रखा, माँ बाप
कनेक्शन ये छोड़ना,
माँ बाप की नजरों ने इन्हें खुशहाल रखा था, वो अपने माँ बाप के साथ वफादार थे, इनके घर भी वफा के साथ चलते रहे। माँ बाप के साथ बेवफाई की, इनके घर भी बेवफाई का शिकार हो गए। माँ बाप खुश, आपकी जिंदगी में दुखों का काम क्या?
वाह,
माँ बाप खुश नहीं है, आपकी जिंदगी में सुख का काम किया? माँ बाप सुखी आप सुखी, माँ बाप दुखी आप दुखी।
इसको ऐसे भी कर लें, औलाद अगर खुश रहेगी तो माँ बाप भी खुश रहेंगे, औलाद अगर दुख में रहेगी तो
माँ बाप सही है,
तो इसमें माँ बाप का भी फॉल्ट
नहीं। माँ बाप का ये फॉल्ट नहीं है, माँ बाप की खुशी औलाद की खुशी में, लेकिन हर औलाद की खुशी माँ बाप की खुशी में नहीं है। अगर औलाद खुश है ना माँ बाप खुश है, लेकिन हर माँ बाप की खुशी में औलाद खुश है? औलाद का वालिदैन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस तरह ये औलाद अपने माँ बाप को देख रही है ना, ये खुद भी माँ बाप बनी हुई है। ये उसको उस वक्त पता चलेगा जब उसकी औलाद बड़ी होगी ना, यानी माँ बाप की सोच क्या होती है और माँ बाप के जज्बात क्या होते हैं, ये उमूमन बंदा उस वक्त समझता है जब उस लेवल पर आता है।
एक औरत अपनी बेटी को तो खुश देखना चाहती है, लेकिन अपनी बहू को खुश नहीं देखना चाहती,
ये उसकी तरबियत की कमी है, ये उसकी तरबियत की कमी है। देखिए ये बिल्कुल आपने जो बात की है ये है कि वो अपने बेटे के लिए जो सोचता है दामाद के लिए नहीं सोच रहा होता, जो अपनी बेटी के लिए सोचा अपनी बहू के लिए नहीं सोच रहा था, बिल्कुल यहाँ तरबियत की कमी है। यहाँ समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, अखलाक दुरुस्त किए जाएंगे। प्रॉब्लम सारा ये है कि हमारा एक प्रोग्राम है मदनी मुजाकरे में, बार बार ये इस पर दर्श दिया जाता है, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में दर्श दिया जाता है, मदनी चैनल पर इसका दर्श दिया जाता है, सब बताया सिखाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर कोई मदनी चैनल देखता नहीं है, हर कोई बात सुनता नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फैमिली वाइज या इस तरह की, अगर ये हमारे तालीम इदारों में आ जाए, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ जाए, हमारे सिलेबस में आ जाए, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि तालीम के साथ साथ तरबियत होगी तो फ़र्क मिलेगा। अब माशाल्लाह आज मतलब कि आपकी रिकॉर्डिंग की एंडिंग चल रही है और इस वक्त बहुत पुरजोर मुतालबा शहजाद भाई का रहा है मेज़बान के साथ, और आखिरकार मेज़बान ने اس پرزور مطالبے کے سامنے یہ کام کیا ہے کہ آپ کے لیے شربت کا انتظام کیا ہے.
وہ ڈرائی فروٹ ڈھک کے رکھا تھا, ابھی انہوں نے شربت کا وہ جگ رکھا, گلاس نہیں رکھے,
لیول کم
ہو گیا. تو وہ تھوڑا سا
یہ گلاس ہے بھائی, ایک درجن گلاس ہے, دو بھائی ادھر, پھر آئے سب کو دو.
نہیں نہیں ان کو دو,
چلو ان کو دو, ضرورت ہے
کیونکہ لیول کہاں کا پرابلم
ہے.
شربت آئیں گے زیادہ چیری ہو.
یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم نے تو شربت پورا کر لیا, آپ نے شاید ایک آدھ سپ لیا ہے بس.
میزبان نے دیا آپ کو ایسا چیز تھی نہیں, تو میں نے ایک گھونٹ لے لیا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ شوگر بھی بڑھاتا ہے اور بہتر نہیں ہے, نقصان دہ ہے.
جیسے ابھی ہم دعوت کی جو بات کر رہے ہیں, تو ایک جو بڑی وجہ وہی جو میں نے ابھی کہی, شاید اس پہ کلام نہیں ہوا, کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں تو میں شاید اس لیے بھی اوائڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو 10-15 ہزار روپے میں اپنے خاندان کو جمع کر کے خرچ کروں, تو جو میں باہر ایک لطف لے رہا ہوں.
دونوں کی امپورٹنس تو ہے نا, خاندان کھلانے میں بھی ایک امپورٹنس ہے, اور اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ بندہ بیوی بچوں پر کرتے ہیں افضل صدقہ ہے,
جی
کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب رشتہ داروں کے ساتھ شریعت کے مطابق کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وہ بھی صلہ رحمی, اور یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب تو دلائے گا نا.
اس کو یوں میں اس کو سیکنڈ میں یہ کر رہا تھا کہ ایک جگہ بات پڑی تھی کہ ایک اسٹیٹ بروکر تھا, تو اس نے اشتہار دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بنگلہ جو ہے وہ بک رہا ہے, تو اس نے دیکھا تو اس کے آئٹم لگائیے, تو اس نے کہا ایڈریس لیا اور نکلا, وہاں بیل بجائی. تو تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا جو شخص ہے وہ آیا, باہر نکلا تو اس نے کہا جی, تو کہا کہ آپ نے اشتہار دیا مکان بیچنا چاہتے ہیں, تو کہا جی ہاں, آئیے آئیے آئیے. تو وہ لے کر اس کو اندر گیا, ڈرائنگ روم میں بٹھایا, تو بات چیت شروع کی کہ کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے یہ وہ. تو تھوڑی دیر میں ایک بوڑھی عورت جو ہے نا وہ پردے میں, وہ بھی جو ہے وہ کچھ ٹرے لے کر آئی, کچھ پھل فروٹ وغیرہ سب تھے. تو اس نے ان کو یہ پیشکش کیا کہ آپ لیں اس میں سے کچھ. خیر اس نے تھوڑا بہت لیا, تو کہا کتنے گز کا ہے, تو کہا وہ سب باتیں کریں گے, آپ بتائیں آپ کی فیملی کتنے, بچے کتنے, وہ اس سے اپنائیت میں بات چیت کرنے لگے. تو پھر اس نے پھر دوبارہ پوچھا تھوڑا بہت کھا پی کے کہ بتائیں تو صحیح آپ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو کہا ہماری ڈیمانڈ ہے 5 کروڑ پہ. کہا 5 کروڑ پہ, یہ تو 2.5-3 کروڑ روپے کی ویلیو ہے اس ایریے میں. کہا نہیں نہیں ہمیں تو 5 کروڑ کا بیچنا ہے. تو کہ یہ 5 کروڑ کا تو نہیں بکے گا. ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی. یوں کر کے انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ گیدرنگ کی اور پھر وہ روانہ ہو گیا. چند مہینے گزرے تو پھر وہ اشتہار دیکھا, تو اس نے سوچا کہ یار شاید پھر اس کا کچھ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوگا. تو پھر یہ پہنچا, بیل بجائے تو وہی شخص پھر باہر نکلا, تو کہا آپ نے اشتہار دیا تھا. کہاں, تو کہا اچھا, تو کہا ہی آئی آئیے. پھر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں. تھوڑی دیر بعد وہی بوڑھی عورت پھر ٹرے لے کر آ گئی, پھر کھلایا پلایا, پھر بات چیت شروع کی. تو کہا نہیں نہیں کچھ بات کر رہے ہیں آج کل, کیا کر رہے ہیں, کیسا کاروبار. تو یوں وہی آدھا گھنٹہ کا کیا ڈیمانڈ کر رہے, کہا 5 کروڑ. کہا انکل میں پہلے بھی بتا چکا آپ کو کہ ایک مکان 5 کروڑ کا نہیں ہے. کہا نہیں ہم کو تو اتنا ہی بیچنا ہے. خیر اب وہ غصے میں چلا گیا. ایک دو مہینے بعد اس کے دوست کا فون آیا, کہہ رہے تمہارے علاقے میں مکان بک رہا ہے تو میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے, چل رہے ہو تم بھی؟ تو کہا ہاں چلو. تو وہ بٹھایا گاڑی میں, وہ آیا تو گاڑی میں لے کر اس ایڈریس میں پہنچا. ارے یار یہاں کہاں پہنچا ہے بھائی, یہ بوڑھا بوڑھی ہے, میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں, یہ گھر ور نہیں بیچیں گے. کہا نہیں نہیں یار مجھے کسی نے ریفرنس دیا. وہ پھر اس نے بیل بجائی. اب وہ بوڑھا شخص پھر آیا تو کہا مکان دیکھنا تھا. جی جی آئیے آئیے. پھر بٹھایا تو پھر وہ ٹریول لے کے آ گئی. اچھا پھر جب دونوں نے بات کی تو پھر وہ 5 کروڑ پہ. اب یہ تھوڑا ناراض ہو گیا. کہا انکل ہم اس علاقے کے مین بروکر ہیں, ہمیں پتا ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اور آپ ہمیشہ ضد کیے بیٹھے ایک سال سے, تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آج آپ بتائیں کہ وجہ کیا ہے آپ کو. تو کہا کہ بیٹا ہمارے گھر پہ کوئی آتا نہیں ہے, تو ہم یہ اشتہار دیتے ہیں تاکہ اس بہانے سے کچھ لوگ آئے اور ہم کو جن سے بیٹھ کے کچھ بات چیت تو کریں. تو یہ جو جتنی یہ ساری ہماری باتیں چل رہی ہیں نا, یہ اصل میں یہ ہے اس دور سے بچے کہ جب آپ بالکل اکیلے ہو جائیں گے.
یعنی
یہ جو نگران شورا جو ہمیں سمجھا رہے ہیں اور جنریشن کو بھی جو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو میٹ اپ ہے نا ہمارا, یہ بہت بڑا مطلب آگے بہت کام آتا ہے.
دوستوں کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں اور ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں, فرق آپ خود دیکھ لیجیے گا. دوست آپ کی خوشیوں میں اپنا مفاد ملائے گا, ماں باپ آپ کی خوشیوں میں اپنی دعائیں ملائیں گے.
واہ کیا بات,
یقین مانے ہو. ماں باپ کے ساتھ भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो ये होते हैं, हो सकता है कि मुझसे आप या आप सुनने देखने वाले सब इत्तेफाक ना करें। हर आदमी अपनी मिजाज अपनी तबीयत पर ही बात, मेरा भी अपने एक मिजाज एक तबीयत है। तो मैं रिश्तेदारी, खानदान, फैमिली, फैमिली कल्चर, मैं पर्सनली तौर पर इसको अहमियत देता हूँ, इसको प्रीफर करता हूँ और मैं इसमें बरकत पाता हूँ, खैर पाता हूँ। और इस्लाम और दीन के बहुत सारे जो मकासिद हैं उनको मैं इसमें पूरा होता पाता हूँ, खानदान और रिश्तों को।
बहुत बड़ी ताकत है
जो हमारी जनरेशन इसको नहीं समझ पा रही है। अल्लाह करे हमारे इस प्रोग्राम से वो इसको समझे और अपने रिश्तों को समझे और अपने रिश्तों को अपनाएं और रिश्तों को बनाएं। जो किसी की खुशी गमी में नहीं जाता ना, लोग उसकी खुशी गमी में भी नहीं जाते, लोग उसको भी भूल जाते। जाएं और जाकर आप नजर आएं, यादत में जाएं, जनाजों में जाएं, आप अपनी फूफी से में अपनी खाला से मिलने जाते हैं। आज की तारीख तक हम जाते हैं, हालांकि वो ना इनको पहचानती है ना मुझे पहचानती है। पिछले तकरीबन 8-9 महीने से वो बेड पर है और मशीन लगी हुई है और वो बस उनकी एक अपना एक वक्त है जो गुजर रहा है। अल्लाह पाक आफियत दे, सलामती दे। ना इन्हें पहचानती है ना मुझे पहचानती है। मैं भी जाता हूँ एक वक्फे के बाद, हम जाते हैं, मेरे खालाजाद भाई बैठे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, पता ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। मगर जब वहाँ से वापसी उतरते तो दिल को एक सुकून होता है कि मैंने अपनी खाला की यादत की है और मुझे लगता है कि मुझे इस पर सवाब मिलेगा। हम आज के प्रोग्राम के जरिए रिश्तों के इमोशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते, आज की जनरेशन आईक्यू पर बात करती है, आईक्यू विदाउट ईक्यू नथिंग। अगर इमोशनल्स चीज़ें नहीं हैं तो आपकी इंटेलिजेंस ही कोई किसी काम की नहीं आएगी, आपके इमोशनल। बल्कि सिंपैथी के साथ साथ अब एम्पैथी बहुत ज़रूरी हो गई है कि आप उससे दो कदम आगे बढ़कर चलते हैं। सिंपैथी तो ये है कि मैं आपके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ, एम्पैथी ये कि आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ और आपके दुख को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सेकंड स्टेप पे जाकर काम करता है। हमने अपने खानदानों को संभाला, अपने रिश्तों को संभाला, अपने कमजोरों को संभाला। मैं आपको बताऊँ, खानदानों में टूट फूट नहीं होगी। हाँ, इतना ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तों में किसी के साथ भी भलाई करते करते हैं, अब एहसान जताने वाला मामला मत रखें। बंदा अपने सदकात बातिल कर देता है ईज़ा देकर और एहसान जताकर। सूरह बकरा में वाज़े तो पहला पाकर फरमा, यानी कि जो सदका करे उसको चाहिए कि अपने सदक़े की हिफाजत करे, यानी जो एहसान करने वाला है, जो भलाई करने वाला है, फिर वो ताना ना दे, तंज ना करे, ऐसा ना हो उसके सदकात बातिल हो जाए। मगर मेरे मशवरा यही होगा कि आप अपने ख़ानदान को संभालें, अपने रिश्तों को संभालें, अपने बच्चों को ख़ानदान और रिश्तों की पहचान कराएं और इनको इन्हीं के अंदर सखावत का दर्स भी दें, अपनायत का दर्स भी दें कि ये दुख सुख में खड़े रहें। यानी अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए और ख़ानदान तो पहले जमा हो जाता है, बच्चे तो पहले जमा हो जाते हैं, तो यही होना चाहिए।
अब नहीं होता,
हम अपनी जनरेशन से बात कर रहे हैं, ये इसमें क्या गलत बात है? इस पर हदीसें मौजूद हैं, इस पर सवाब मौजूद है, इस पर माशरा कायम है हमारा, सोसाइटी कायम है हमारी। और अगर कोई यकीन नहीं आता तो जो इससे कटे हैं, जो इससे दूर रहे हैं, वो जिस सोसाइटी में वो जी रहे हैं, आप जाकर उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि हम उदासी और मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कोई है ही खड़ा ही नहीं है। शुरू में इनको मज़ा मिला था, अकेले हो जैसे आप कह रहे हैं ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक स्टेज आता है कि आपको आपका ख़ानदान, रिश्ता, ये सारी चीज़ें आपकी इंतहाई ज़रूरत बनी हुई होती हैं। क्योंकि हमारी इस प्यारी जनरेशन जो अभी हमारे पीछे आ रही है उसको शायद इसका इतना शोर नहीं है। अच्छा, हर जगह ऐसा नहीं है, हर जनरेशन ऐसी नहीं है, जो अब जो जिसको आप यंग जनरेशन कहते हैं, हर जनरेशन ऐसी नहीं है। मैंने देखा बड़ी निभाने वाली, बड़ी चलाने वाली, बल्कि अपने बड़ों को ख़ानदान निभाने का दर्स देने वाले भी नौजवान मौजूद हैं। इनको मैं जानता हूँ कि जो ख़ानदान के बड़े जो थे ना, वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे, मगर इनको मिलाया है उनके बच्चों ने कि आप मिलो ताकि नीचे के लोग मिलेंगे। वरना आप नहीं मिलोगे तो नीचे के लोग नहीं मिलेंगे, तो उसके नीचे के लोग भी नहीं मिलेंगे। तो क्या कतवे तालुकी का जड़ और ख़ानदान में डाल कर जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मिलिए और अपने घर और ख़ानदान को मिलाइए, अपने रिश्तों को मिलाइए और उसकी खूब बरकतें पाइए।
ऐसा इसमें कोई गुनाह भी है कि अगर कतवे तालुकी करते हैं तो?
कतवे तालुकी इस्लाम ने इसको जायज़ रखा ही नहीं है। कतवे तालुकी आप नहीं कर सकते, आप तालुक जोड़ने वाली बात करें, यहाँ पर तोड़ने वाली बात कर ही नहीं सकते।
यहाँ एक चीज और भी अगर आप हमें समझा दें कि अगर आज जनरेशन इस बात पे नाला है कि हमारे एक्सपेंसेस, हमारी अपनी जो मामलात हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बड़ों ने जो हमें इतना जो कुछ भी सपोर्ट किया किया तो उनको कोई परेशानी होती थी, मुश्किलात में वो भी आए हैं, मगर हमेशा हमें मतलब उन्होंने ऊपर बढ़ाया है, यानी वो जो जितने भी दुख तकलीफें थी ना, वो
मदद में खुशी होती थी। आज
जी जी
मदद में दुखों में खड़े रहने में खुशी होती थी, बैठे रहते थे दो दो चार चार दिन तक बैठे रहते थे यार, अभी तो घंटा डेढ़ घंटा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये नफसा नफसी का मामला जो कुछ हमारे यहाँ हुआ है, हमें भी और हमारे जनरेशन को भी, आने वाले जनरेशन को भी इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
दो जॉबे करे फिर भी पूरा नहीं होता था, तो आपके दौर में अगर अंडा 5 रुपए का था तो अभी 30 रुपए का, तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी आप जरा
नहीं तो उस वक्त आमदनी अगर 15 रुपए की थी तो आज 1500 रुपए की भी तो है। जब 15 रुपए की आमदनी थी ना तब भी महंगाई थी, आज 1500 की आमदनी है तब भी महंगाई है, 15000 की आमदनी तब भी महंगाई है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आता है, हुजूर मेरे घर के 4 अफराद है, मेरी आमदनी 5000 है, दुआ कर दें। हजरत ने दुआ कर दी। इसके बाद एक और शख्स आया, हजरत मेरे घर के 4 अफराद है, मेरी आमदनी 15000 है, दुआ कर दें। हजरत उसके लिए भी दुआ कर दी। फिर तीसरा शख्स आया, हजरत मेरे घर के 4 अफराद है, मेरी आमदनी 40000 है, पूरा नहीं होता, दुआ कर दें। मतलब उसके भी दुआ कर दी। फिर चौथा शख्स आया, हजरत मेरे घर के 4 अफराद हैं, मेरी आमदनी 70000 रुपये, मेरे को पूरा नहीं होता, हजरत उसके लिए भी दुआ कर दी। फिर हजरत ने फरमाया चारों एक ही तरह के थे, हमें कनात और सब्र हासिल नहीं है।
शहजाद भाई मदद होती थी, यकीन माने वो पूरा पूरा अपना सब कुछ दे देता था, सामने वालों को इजहार भी नहीं होता था कि मैं अपना सारा तुझे दे चुका हूँ। यानी वो जो हमदर्दी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट कुछ और ही था।
बताता हूँ कि एज वालों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ किया, आज की यंग जनरेशन में भी इस तरह के जज्बे रखने वाले, अपने खानदानों की मदद करने वाले, खानदानों को जोड़ने वाले, रिश्तों को निभाने वाले, इस यंगस्टर ग्रुप के अंदर भी एक तादाद मौजूद है जो इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं और हमारे प्रोग्राम को वो इंशाल्लाह ताला इंडोर्स करेंगे, मगर जो इससे दूर हो गए हैं, मुतनफ़िर हो गए हैं, हम उन्हें प्रॉपर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको दुनिया और आखिरत में भलाई के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं।
हो सकता है कि अभी आपका प्रोग्राम देख के कुछ लोग ये नियत करें कि हम जो है वो अपने भी रिश्तेदारों को बुलाएं, तो अब घर में बात हो रही होगी, पहले अम्मी के साइड के रिश्तेदार बुलाने चाहिए या अब्बू के साइड के रिश्तेदार बुलाने चाहिए?
चलो
अब ये, या दोनों को साथ बुला लें?
असल में ये पर्दगी ना हो, इसके मुताबिक मशवरा करके फैसला करना चाहिए।
कौन फैसला करेगा, अम्मी या अब्बू?
वैसे घर की क़यादत अब्बू के हाथ में होती है।
वाह।
और रिजालो कवामून अला निसा,
जो वालिद बोल रहे हैं बस उसको पहले
होना वही चाहिए, लेकिन वालिद को भी चाहिए कि मशवरा करके फैसला करे। घर एक इदारा है जिसका मुंतजिम आला घर का मर्द है, ये कुरान ने बनाया, और रिजालो कवामून अला निसा, और जब इस सिस्टम को आप डिमोलिश करेंगे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।